양아치 새는 돌았을 겁니다. इसको बोल के ना साउंड सिस्टम को ऐसे रखें कि जगह हो जो एडजस्ट करने वाला
भी नया ऑर्डर लगने वाला।
तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा पहुंच गए, भगवान को रथ से अंदर मंदिर में लेकर गए, सुभद्रा बलराम जगन्नाथ अपने अपने आसन पर बैठ गए, उनको फिर से स्नान कराया गया, फिर से भोग लगाया गया। जब जगन्नाथ बलराम सुभद्रा वहां पर बैठे हुए थे, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया, तो कीर्तन होने लगा, नृत्य करने लगे, और महाप्रभु ऐसे नृत्य कर रहे थे और सब लोग देख रहे थे। फिर शाम के समय गुंडीचा मंदिर में नृत्य करने के बाद में भगवान ने आरती देखी। शाम की आरती देखने के बाद एक गार्डन है, इसको आईतोटा गार्डन बोलते हैं, आईतोटा गार्डन, ये वृंदावन से अभिन्न है। और चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पर रेस्ट किया, विश्राम किया। 9 दिन तक अद्वैत आचार्य और सारे भक्त भगवान को अपने अपने घर प्रसाद के लिए बुलाते। अभी ऐसा था कि 4 महीने तक जो नवद्वीप के भक्त हैं, जो बंगाल के भक्त हैं, वो 4 महीने तक पुरी में रहते थे, और जब पुरी में रहते थे तो महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाते। तो 4 महीने तक कंटिन्यूअसली महाप्रभु एक एक डिवोटी के घर में जाते। लेकिन समस्या ये हुई कि जो बहुत वीआईपी डिवोटी थे, इंपॉर्टेंट डिवोटी, उनको चांस मिल रहा था, बाकी को चांस मिला ही नहीं। ये प्रॉब्लम कोल्हापुर में भी होता है, ये महाराज आते हैं, बड़े बड़े लोकनाथ महाराज, आदनाथ महाराज, तो सीनियर डिवोटी जो मैनेजमेंट में है या जो यू नो जो काउंसलर हैं, तो उनको चांस मिलता है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो करेक्ट भी है टिकट के अनुसार। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम घर में नहीं भी बुला सकते, अगर मानसिक रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो भी गुरु और भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो 4 महीने होने के बाद में सब इम्पोर्टेंट डिवोटीज को चांस मिला, और बाकी भक्तों को चांस नहीं मिला। कभी कभी भक्त क्या करते हैं प्रसाद के लिए, तो 2 या 3 भक्त मिलकर कंबाइंड इन्विटेशन देते हैं। यानी जैसे आपके घर में आए प्रसाद के लिए, तो एक के घर से चावल आ गया, से दाल आ गया, सब्जी आ गया, पूरन पोली आ गया, खीर, और क्या अच्छा लगता है दया साहब प्रभु आपको, पुलाव राइस, टैमरिंड राइस, सब बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं। फिर महाप्रभु रोज सुबह स्नान करने के बाद जगन्नाथ का दर्शन करने जाते हैं। अब जगन्नाथ कहाँ पर रहते थे, कौन से मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में। फिर वहां पर कीर्तन करते, फिर चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को नृत्य कराते, खुद भी डांस करते, अद्वैत आचार्य को डांस कराते, नित्यानंद को, हरिदास ठाकुर को, अच्युतानंद को, कभी कभी महाप्रभु वक्रेश्वर को भी नृत्य में लगाते। गुंडीचा मंदिर का जो प्रांगण है, जो कंपाउंड है, वहां पे कीर्तन होता था। आपने देखा है गुंडीचा मंदिर में भगवान जाने के बाद, इसलिए मेरा प्लान है कि इस बार रथ यात्रा 4 तारीख को है और 12 तारीख तक भगवान गुंडीचा में रहेंगे, 8 दिन रहते हैं। जब लौट के आते हैं उसको बोलते हैं उल्टा रथ सर में। मैं सोच रहा हूँ उल्टा रथ तक इस बार रहना वहां पर। उल्टा रथ मतलब जब रथ लौट के आता है, भगवान जगन्नाथ वापस पहुंचते हैं, तो वो भी एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, उल्टा रथ बोलते हैं। तो महाप्रभु संकीर्तन में भाग लेते, दिन में 3 बार कीर्तन करते, सुबह, दोपहर को और शाम को। फिर महाप्रभु को ऐसा लग रहा था कि अब कृष्ण वृंदावन में आ गए। उनके अंदर जो दुख की भावना थी कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, जो विरह लग रहा था, वो विरह दूर हो गया। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण वृंदावन में आ गए, गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा राधा और कृष्ण के लीला के विचार में लगे रहते और इसी विचारों में मग्न रहते। गुंडीचा मंदिर के पास में बहुत सारे गार्डन थे और चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त हर गार्डन में लीला करते थे। गुंडीचा मंदिर के पास में एक सरोवर है जिसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। राजा इंद्रद्युम्न के नाम से सरोवर बनाया गया था। तो भगवान भक्तों के साथ खेलने लगे, भगवान भक्तों को पानी फेंकते, भक्त भगवान को पानी फेंकते, कभी कभी पानी के अंदर सर्कल बनाते, कबू एक मंडल कबू अनेक मंडल, जल मंडू का वाद्य सब बजाए करताल, और पानी में रहकर करताल बजाते। और क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स, मेंढक की आवाज करते टर टर ऐसे। एक बार राधानाथ महाराज के साथ हम कुछ भक्त गए थे एक कोई सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो सुबह मॉर्निंग का समय था मंगल आरती का, तो महाराज मंगल आरती गा रहे थे, हम मंगल आरती से गा रहे थे और करताल जो है पानी के अंदर बजा रहे थे हाथ से खड़े। संसार दावा नलली ढलोक जैसे पानी बिना करताल यूज किए पानी के साथ हाथ रगड़ने से आवाज आती, तो ये भी परंपरा में मैं पढ़ रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं था चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। कभी कभी दो दो डिवोटी ग्रुप बनाते हैं और लड़ाई करते हैं एक दूसरे को पानी खूब डालना और भगवान चैतन्य महाप्रभु बाहर आ गए और तमाशा देख रहे थे, दो भक्त आपस में लड़ गए। पहला पार्टी था, पहला फाइट था नित्यानंद और अद्वैत, एक तरफ नित्यानंद और अद्वैत कौन ज्यादा पानी फेंकते, अद्वैत आचार्य अद्वैत नित्यानंद जल फैला फैली अद्वैत हारिया, कौन हार गया अद्वैत, क्या किया उसने फिर पाछे करे गाला गाली, तो गाली देने लगे। नेक्स्ट गेम था स्वरूप दामोदर गोस्वामी और पुंडरीक विद्यानिधि, तीसरा ग्रुप था मुरारी गुप्ता और वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार है और वासुदेव दत्त प्रहलाद महाराज के अवतार। फिर एक और फाइट हो रहा था श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित, भक्तों में भी फाइट होता है लेकिन प्रेम का फाइट, प्रेम का अलग। अनदर फाइट था राघव पंडित और वक्रेश्वर पंडित, एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। सर्व भट्टाचार्य रामानंद राय के साथ खेल रहे थे और अभी सारव भट्टाचार्य इतने गंभीर पंडित थे, पहले मायावादी भी थे और रामानंद राय तो बहुत ही गंभीर है। रामानंद राय वही है जिसके साथ चैतन्य महाप्रभु गोबर में बातचीत करते हैं, तो ये दोनों सब गंभीरता को भूल के बच्चे की तरह खेल रहे थे जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु बाहर से देख रहे थे और मुस्करा कर बोलने लगे गोपीनाथ आचार्य को, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य की कृपा से ही सर्व भट्टाचार्य भक्त बने थे। कल रात के लेक्चर में मैंने बताया था गोपीनाथ आचार्य के ब्रदर इन लॉ थे सर्व भट्टाचार्य, कल बताया था मेवने सर्व भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य, सर्व भट्टाचार्य सर्व भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु पास में खड़े थे सरोवर के बाहर, और सरोवर के अंदर सर्व भट्टाचार्य और रामानंद राय गेम खेल रहे थे, तो महाप्रभु बोले उनको इन दोनों को बोलो पंडित गंभीर दुहे प्रामाणिक जन, इतने बड़े महान पंडित हैं, बाल चांचल्य करे कराह वर्जन, उनको बोलो ये छोटे बच्चों की तरह खेलना बंद कर दें। गोपीनाथ आचार्य बोले तुम्हारा कृपा महासिंधु उच्चालिता करे जबे तारा एक बिंदु, आपकी महान कृपा का एक बूंद उनके ऊपर स्पर्श हो गया है इसीलिए वैसे खेल रहे हैं। मेरु मंदर पर्वत डुबाए यथा तथा ए दुई गंड शैल इहार की कथा, अगर आपकी कृपा का एक बूंद भी इनको मिल जाते हैं तो सुमेरु पर्वत मंदर पर्वत ये भी डूब जाते हैं, उसकी तुलना में ये दो सज्जन जो हैं ये छोटे टेकरी के समान है। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि वो आपकी कृपा के सागर में डूब रहे हैं। शुष्क तर्क खली खाईते जन्म गेला जार तारे लीलामृत पियाओ एक कृपा तो मार, इन सबको आदत थी लॉजिक की, लॉजिक क्या होता है तर्क वितर्क, उसकी तुलना की गई ड्राइड ऑयल केक, एक केक केक या ब्रेड इसमें से ऑयल सब निकाल दिया गया सूखा, जैसे कभी सूखा ब्रेड होता है या सूखी चपाती इसमें घी भी नहीं लगाया और बहुत दिनों से कड़क हो गई है, तो तर्क वितर्क करना वो सूखी चपाती खाने के बराबर है। और सारव भट्टाचार्य ने पूरे जीवन भर यही चपाती खाई है, लेकिन अब आपकी कृपा से उसको दिव्य लीला का आस्वादन करने का अवसर मिल रहा है, ये आपकी महान कृपा है। हासी महाप्रभु तबे अद्वैत अनिल जलेर उपरे तारे शेष शैया कोयल, गोपीनाथ आचार्य से बात करने के बाद चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और अद्वैत आचार्य को बोले तुम शेषनाग बन जाओ। कभी कभी देखे कोई कोई डिवोटीज को आता है ये कि कैसे पानी में लेट जाना गहरे पानी में, आपको आता है सर? नहीं, मैं भी एक बार महाराज के साथ गया था किधर था, किधर तो देखा था, समुद्र में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में मारे जैसे लेट गए थे, ऐसे लग रहा है कि कोई बस कोई प्राण भी नहीं है, ऐसे ऐसे तैर रहे एकदम समाधि में आंख बंद करके। कई बार तो ऐसे अपने पैरों को ऐसे लगा के अंदर पानी के अंदर, आपको आता है ऐसा लोग नहीं आता तो ट्राई मत करना, नहीं तो आप डूब जाओगे, फिर मेरा नाम दोगे, भागवतम क्लास में बोला था।
तो
क्या बोल
रहे,
अल्टीमेटली हरी नाम है, कभी डूब भी गए ना हरी हरी बोल दे बस, तो भगवान चाहेंगे जिंदे हो जाएंगे या हरी हरी बोलेंगे, अगर डूब गए तो जल्दी मंदिर पहुंच जाएंगे। नहीं, समुद्र से मंदिर थोड़ा दूर है जगन्नाथपुरी, डूब गए तो तुरंत जगन्नाथ के पास पहुंच जाए, है कि नहीं। हम एक बार यात्रा में जा रहे थे मायापुर राधानाथ महाराज के साथ, और ट्रेन में हम जा रहे थे मायापुर, और ट्रेन में एक डिवोटी ने प्राण त्याग दिया। सुना आपने, याद है आपको, डॉक्टर एक एक जोशी का कोई बॉम्बे के डिवोटी, आप थे उसमें माता जी? हाँ, वार्ता सुनी। तो वहां पे पहुंचे, फिर ऑफकोर्स भक्तों को दुख हुआ, लेकिन जब उनका लेक्चर दिया गया उनके तिरुभाव के बारे में, तो महाराज बोले कि आप सब जगह मायापुर आना चाहते थे, लेकिन उनके आने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि भगवान उनको जल्दी बुला लिया। तो तीव्रता होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे लैक्साडाइकल नहीं, कोमल भक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भक्त जब हो गया कोई बात नहीं, भगवान के कृष्णा, हे जगन्नाथ, जगन्नाथ हे गौरंग, कब कब मुझे प्राप्ति होगी आपकी, उसके लिए उत्सुकता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा नहीं होगी तो फिर कई जन्म लग जाएंगे। जैसे यहां से बॉम्बे जाने आज मुझे, तो अगर मैं समझो मैं बैलगाड़ी पे जाता हूं तो शायद 2-3 दिन लग जाएंगे, और कल सुबह का फ्लाइट नहीं मिलेगा। और अगर मैं ऐसी बस लेता हूं जो थाम्बत दुख के जाते हैं तो भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक्सप्रेस हाईवे से जाता हूं तो जल्दी पहुंच जाऊं। या अगर आप हर जगह पे जहां पे एग्जिट मिलता है, कराड़ में, सतार में, सब जगह बाहर निकलते हैं हाईवे से, तो फिर नहीं पहुंचे। श्री भक्ति का मार्ग हाईवे की तरह, एक्सप्रेस हाईवे, और बीच बीच में कोई दूसरी जगह झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं, बस कृष्ण जगन्नाथ गौरंग 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 जगन्नाथ को प्राप्त। वी शुड हैव दैट फेथ, हमें श्रद्धा होनी चाहिए मेरे को कृष्ण को ही प्राप्त करना है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदन बहुशाख अनंत बुद्ध अव्यवसाय, जो व्यवसाय का व्यक्ति है उसका एक दृढ़ निश्चय है मुझे कृष्ण को प्राप्त करना, और थोड़ा एक्स्ट्रा जप करना चाहिए। फिर माता जी मुझे बता रहे थे, मैं उनको एक बार बोला कि अब एकादशी के दिन 32 माला जप करो, तो अभी बोल रहे हैं कि मैं रोज एकादशी रोज 32 करूं। मैंने बोला मैं नहीं करता, लेकिन वो कर रहे हैं, तभी मैंने सोचा मैं भी करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं किसी को और वो व्यक्ति इतना सीरियसली ले लेता है, तो हमको ऐसे गंभीरता से लेना चाहिए। स्पेशली जो गृहस्थ डिवोटी है तो उनको फ्री टाइम कभी मिलता है तो जप करना चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे आप अभी यहाँ पे आए, कृष्णानंद प्रभु आए हैं इसलिए क्लास सुनने आए, अगर मैं नहीं होता तो क्लास नहीं होती, फिर आप घर में होते तो टाइम पास चल रहा होता दूसरे से। जैसे सोचो कि कृष्णानंद प्रभु रोज हैं और रोज थोड़ा एक्स्ट्रा जप करो, है ना, 1 घंटा 2 घंटा क्लास, आने जाने में आधा घंटा, तो 2 घंटा रोज एक्स्ट्रा जप करो, उसका कुछ परसेंटेज मुझे भी दे दो फोन, तो कमीशन तो देना चाहिए ना। जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं ना आप इंश्योरेंस करते हैं, कौन सा इंश्योरेंस? लाइफ टाइम इंश्योरेंस, ये एक्चुअली बेकार चीज है, लेकिन पैसे कमाने के लिए करते हैं वो, तो करना पड़ता है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस मैं बेच रहा हूँ, KIC कृष्णा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये पक्का इंश्योरेंस है पूरा गारंटी के साथ। ऑफकोर्स आपका काम भी अच्छा है, मैं अपराध नहीं करना चाहता, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में तो सब करना पड़ता है, लेकिन ये इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट। अभी ये प्रभु इंश्योरेंस क्यों करते हैं कलेक्शन, इसलिए नहीं क्योंकि लोगों के कल्याण हो, लेकिन इसलिए क्योंकि थोड़ा कमीशन मिले, है कि नहीं। जैसे मैं भी प्रीचिंग कर रहा हूँ किस लिए, लोगों का कल्याण भी हो लेकिन मेरे को भी कमीशन मिले, कम से कम 10%। अगर 10 लोग प्रीचिंग से बैक टू गॉड गए तो कम से कम उसमें से एक मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर मैं भी भगवान के धाम चला जाऊँ। क्या सर प्रभु कमीशन देंगे ना, तो सब डिवोटी से मेरा निवेदन एटलीस्ट एकादशी के दिन 32 माला जप कर, और बाकी दिन 16 तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन हो सके तो 20 से 25 करते रहे, और इच्छा के ऊपर है। अगर आप इच्छा करोगे सब कुछ हो जाएगा, अब इच्छा करोगे तो नींद भी खुल जाएगी जल्दी अपने आप से, अलार्म नहीं भी लगाए तो भी खुल जाएगा, और इच्छा नहीं होगी तो अलार्म बजेगा और सो जाएगा। ईगर उत्सुक होना चाहिए, नहीं मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, पता नहीं कितने क्षण बचे हैं मेरे लाइफ में। नहीं अब जैसे ये लाइफ इंश्योरेंस आजकल इसमें मोबाइल में आता है लाइफ टाइम कार्ड है ना, लाइफ टाइम, हाँ लाइफ टाइम, अरे कब कब तक अनंत, उसका नाम अनंत रखा है उन्होंने BSNL में ना। अरे भाई लाइफ ही अनंत नहीं है तो तुम्हारा लाइफ बहुत छोटा है, आज हम यहाँ हैं कल पता नहीं कौन से शरीर में होंगे, इसलिए बस जब भी समय मिले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस एब्जॉर्ब हो जाना भगवान की भक्ति में, और इस जन्म में भगवान को प्राप्त करने का सुदृढ़ निश्चय करना। तो अद्वैत आचार्य अनंत शेष बन गए और चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर लेट गए और शेषशाही विष्णु प्रकट करने लगे, जैसे रंगनाथ जी हैं श्रीरंगम में शेषशाही विष्णु। अद्वैत आचार्य पानी में तैर रहे थे चैतन्य महाप्रभु को लेकर, कुछ देर तक महाप्रभु खेलते रहे फिर स्विमिंग करके बाहर आ गए। बाहर एक गार्डन है इसको आईतोटा बोलते हैं, आईतोटा गार्डन में गए भक्तों के साथ। उस समय पूर्णानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती और सारे भक्त ने सब भक्त मिलकर अद्वैत आचार्य के घर गए प्रसाद लेने के लिए। इधर वाणीनाथ राय जो रामानंद राय के भाई थे, रामानंद राय के पिताजी का नाम था भवानंद राय, भवानंद राय के 5 पुत्र थे, एक वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और रामानंद। ये 5 भाई कौन है कृष्ण लीला में? रामानंद राय ललिता सखी नहीं, विशाखा सखी, हाँ, लेकिन रामानंद राय साथ में अर्जुन भी है। और ये 5 भाई हैं ये कौन है? 5 पांडव, नेचुरली अर्जुन बोल दिया तो इतना ही। और उनके पिता भवानंद राय कौन है? पांडु। तो वाणीनाथ राय की सेवा थी कि मंदिर से प्रसाद लेकर आना, सब भक्तों को बांटना। तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रसाद वाणीनाथ राय आए वो सब चैतन्य महाप्रभु के दूसरे पार्षदों ने ग्रहण किया। प्रसाद लेने के बाद दोपहर को फिर से भगवान गुंडीचा मंदिर गए नृत्य करने के लिए, और रात के समय वो गार्डन में जाके सो गए। अगले दिन फिर उठे, फिर गुंडीचा मंदिर गए, फिर नृत्य किया और फिर बाद में फिर कीर्तन किया, फिर गार्डन में लीला चल रही थी। ये सब रोज चलता था महाप्रभु का, वृंद को बोलते हैं जगन्नाथ, जगन्नाथ वल्लभ नाटक। जगन्नाथ पुरी में एक गार्डन है जगन्नाथ, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, यहाँ पे महाराज का लेक्चर हुआ था एक बार, बहुत बड़ा जगह है। उस बगीचे में बहुत सारे वृक्ष थे, लताएं थे, और वो बहुत प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु को देखकर। पक्षी चरचराहट कर रहे थे और भ्रमर से चल रहे थे और बहुत ठंडी हवा बह रही थी, और चैतन्य महाप्रभु एक एक पेड़ के नीचे जाके नृत्य कर रहे थे और वासुदेव दत्त अकेले गा रहे थे कीर्तन। जहां जहां महाप्रभु जाते वासुदेव दत्त उनके पीछे पीछे जाते और अलग अलग जगह पर अलग अलग गीत गाते। फिर महाप्रभु ने वक्रेश्वर पंडित को बोला, वक्रेश्वर तुम डांस करो, और वो डांस करने लगे और चैतन्य महाप्रभु खुद गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरे कीर्तन कार्य ये महाभगवान के साथ गाने लगे, इतने मग्न थे कीर्तन में कि उनको समय की सुधि नहीं रही। जैसे आप इतने मग्न होते पता नहीं चलता क्लास में कितना समय हो गया, या जब हम कोई भी चीज इंटरेस्टिंग करते हैं तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। कई बार बचपन में मुझे याद है, मैं भी सब बचपन को आदत होती है, बच्चों में जब खेलने जाते हैं पता ही नहीं चलता कितनी देर हो जाती है, और पढ़ाई करने बैठते हैं तो हर मिनट लगता है अरे कब तक चलेगा ये क्लास। तो चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों का भगवान से इतना प्रेम था, हम कैसे जान सकते हैं कि मेरा भगवान से प्रेम है कि नहीं है, कैसे जान सकते हैं मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैसे जान सकते हैं पीताम्बर गोपाल प्रभु? हाउ डू यू नो वेदर यू आर इंक्रीजिंग इन योर लव फॉर गॉड? भगवंता जी प्रेम बढ़ता है कि कम ही होता है, कैसे समझना? हाँ, भगवान के प्रति आसक्ति कैसे मालूम पड़ेगा? बोला किसी ने, बोला किसने बोला? हाँ, चैंटिंग और हियरिंग कैसे हो रहा है, और वैष्णव सेवा भी। अगर वैष्णव सेवा अच्छा हो रहा है तो अपने आप हियरिंग चैंटिंग भी अच्छा हो जाए। हमारे अंदर ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए कि हम दौड़ते हुए आ जाए कथा सुनने के लिए, दौड़ते हुए जाए जप करने के लिए, और जैसे मृत्यु आए तो दौड़ते हुए जाए गोलोक वृंदावन। ऐसा में दौड़ते नहीं, उड़ते हुए जाएंगे, सब फ्लाइट से जाते हैं, वहां ट्रेन नहीं जाते नहीं, क्योंकि शरीर यहीं पर छोड़ना पड़ता, शरीर यहीं पर छोड़ना पड़ता। और शरीर से भी आसक्ति है तो पुनर्जन्म लेना पड़े। कई बार ब्रह्मचारी होते इसका परिवार जीवन कुछ नहीं होता, कोई पत्नी बच्चे नहीं है सोचने के बारे में, लेकिन शरीर से आसक्ति हो जाती है, ये शरीर में रहो। हमारी आसक्ति सिर्फ कृष्ण से होनी चाहिए, बस आई वॉन्ट कृष्ण ओनली, बस मिलान की काय नहीं पाई, फक्त कृष्ण 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 कृष्ण। जब भगवान के धाम जाना भी चाहोगे तो माया देवी टेस्ट करेगी, आपके सामने अलग अलग चीजें रखी जाएगी, हरि बोल प्रभु थोड़ा थम्बा, कहीं हरकत नहीं आज नहीं तर पुढ़चे जन्म में काय लौकर कैसा ला जाए। कई बार डिवोटीज मेरे को बोलते हैं कि आप क्यों इतना ज्यादा जल्दी जल्दी करते हो, है ना। एक डिवोटी मेरे को बोल रहे थे, कोल्हापुर के हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो बोल रहे थे जो बाकी भक्त जो है राधा गोपीनाथ प्रभु और सब भक्त जो है वो लास्ट में बोलते हैं, आप पहले ही बोल देते हैं मृत्यु के बारे में। मैं बोला क्योंकि मुझे गारंटी नहीं है कि लेक्चर के एंड तक मैं जीवित रहूंगा कि नहीं, लेकिन हमको पता नहीं, वी मे डाई एवरी मिनट, एनी मिनट यू कैन डाई, वी शुड बी रेडी एवरी मिनट। यस कृष्णा आप बताओ मैं क्या सेवा करूं, कहां पर, आप मेरे को वैकुंठ ले जाओ, गोलोक ले जाओ, नरक ले जाओ, बस बीडबैग साथ में होना चाहिए, बीडबैग होना चाहिए, हरि नाम भक्तों का संग हो, बस और क्या चाहिए, थोड़ा प्रसाद तो मिल ही जाता है नहीं सब जगह पर। तो भक्त एक ही इच्छा होनी चाहिए, मुझे कृष्ण के पास जाना ही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में। संसार है भी बहुत खराब जगह है, जेल में क्या अच्छा है, जेल से बाहर निकलना या जेल में थोड़ा कंफर्टेबल रूम मिलना। जेल में तो कंफर्टेबल रूम है, वहां MP3 प्लेयर सुन सकते हैं और AC रूम है, नहीं वो अच्छा है कि जेल से बाहर निकलना अच्छा। अधिकांश लोगों को लगता है कि जेल में रहना अच्छा, संसार जेल में रहना अच्छा, आपको भगवान की कृपा मिली है इसलिए आप बोल रहे हैं बाहर निकलना अच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु हमें यहां दिखा रहे हैं कि कैसे इस रथ यात्रा में भाग लेने से हमें संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो कीर्तन करने वाले समय का सब भूल गए रिस्ट्रिक्शन, फिर सब नरेंद्र सरोवर गए, नरेंद्र सरोवर में खेलने लगे। कुछ देर खेलने के बाद में फिर महाप्रभु वापस आईतोटा गार्डन में आए और भक्तों के साथ प्रसाद दिया। अब गुंडीचा में भगवान जगन्नाथ कितने दिन रहे, कितने दिन रहते हैं जी गुंडीचा में, लिखा 9 दिन, 9 दिन भगवान, 9 दिन गुंडीचा रहे जगन्नाथ, महाप्रभु ऐसे लीला करे भक्त साथ। ऐसी लीला चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ कर रहे थे। भगवान जिस गार्डन में लीला करते उसका नाम है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, कौन में गौड़ी मठ के बाजू में ही है। जब हम जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बाद एक गौड़ी मठ आता है, और गौड़ी मठ से थोड़ा आगे जाओगे तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है लेफ्ट साइड में। तो वहां पे एक बार महाराज ने लेक्चर भी दिया था, याद है आपको गोपी जन, बड़ा मैदान, जब 2000-3000 भक्त आए थे, 2 साल पहले भी रथ यात्रा में पहला प्रोग्राम वहीं पे हुआ था, देवामृत स्वामी महाराज भी थे। तो 9 दिन तक भगवान गुंडीचा में रहे। अब फेस्टिवल आ रहा था हेरा पंचमी, पंचमी यानी 5वां दिन, यानी भगवान जगन्नाथ जाके 5 दिन हो गए और फिर भी लौट कर नहीं आए। तो एक फेस्टिवल होता है, और राजा प्रताप रुद्र ने बताया कि ये जो उत्सव मनाया जाएगा हेरा पंचमी, हेरा पंचमी यानी लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित होते हैं कि भगवान जगन्नाथ गए थे और लौट के नहीं आए। भगवान जगन्नाथ जाते समय लीव लेके गए थे, लेकिन कितना दिन का लीव सैंक्शन नहीं किया, यानी तो अगर आप लीव 2 दिन का लेके जाते हो तो 3रे दिन पूछते हैं, तो बेस्ट है लीव का ऐसे चले जाना, बाद में एक सर्टिफिकेट दे देना कि बीमार हो गए थे, या कोई यात्रा में जाना है वृंदावन यात्रा में और आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो कहे आजारी पड़ना, क्या जाना। और कई डिवोटीज, सनातन गोस्वामी ने भी ऐसे किया, सनातन गोस्वामी तो मिनिस्टर थे और उनकी इच्छा नहीं थी कि मंत्री बने, तो उन्होंने बस मैसेज भेज दिया मैं बीमार हूं बीमार हूं। फिर राजा बहुत होशियार था और राजा ने डॉक्टर को भेजा, डॉक्टर ने बताया तो अच्छा है तबीयत है, चंगा है बिल्कुल, फिर राजा खुद आ गए सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए और सनातन भागवतम क्लास में बैठे और सनातन को तुरंत पकड़ लिया। बोले सनातन ये क्या हो गया, तो मेरे मंत्री हो? सनातन बोले सॉरी इस्तीफा ले लो मेरा। एनीवे एक बार राधानाथ महाराज बता रहे थे, कई लोग सोचते हैं कि यात्रा पे जाना ये इंद्र तृप्ति है। दूसरों को बोलते हैं आप जाओ यात्रा पे, मैं पीछे रह के सेवा करूंगा। लेकिन पीछे रह के सेवा करना भी जरूरी है और यात्रा में जाना भी जरूरी है। स्पेशली गृहस्थ डिवोटी के लिए यात्रा में जाना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 8 दिन या इस बार वृंदावन 15 दिन है, इसमें और कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ कृष्ण के बारे में। कोई प्रश्न है किसी को? तो राजा प्रताप रुद्र बोले ये 5वें दिन होता है फेस्टिवल, हेरा पंचमी। पंचमी यानी 5th डे, इसको हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय बोलते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जाके 5 दिन हो गए वो लौट कर नहीं आए, तो लक्ष्मी देवी बोलती है कि मैं खुद जाऊंगी गुंडीचा मंदिर में, इसे उन्हें हेरा पंचमी। हेरा हेरा यानी देखना, नयने हेरी बो सदा युगल रूपवासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रयासी नमो नमः। इसने अपने भजन सुबह गाते हैं, नयन में मैं भगवान के रूप को देखूंगा, इसको पंचमी बोलते हैं, 5th डे। राजा प्रताप रुद्र ने मैं बता रहा था आपको कि भगवान जगन्नाथ चले गए और 5 दिन तक लौट कर नहीं आए, लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने सेवकों को बोला जाओ सब जगन्नाथ के सेवक को गिरफ्तार करके ले आओ और मेरे चरणों में प्रणाम करो। तो राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्रा से बोला कि ये जो हेरा पंचमी का उत्सव है इतना अच्छा मनाओ, इतना अच्छा मनाओ कि चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाए। कपड़े छापो, थोड़े घंटियां बनाओ, छत्र बनाओ भगवान को सजाने के लिए और रिंगिंग बेल्स एकत्र करो, फिर पूरे म्यूजिकल पार्टी रखो, इस तरह से निवास करो। और दूसरी बात, द्विगुण करिया सब उपहार, सबको प्रसाद जो है डबल बनाओ, इतना बनाओ इतना बनाओ कि रथ यात्रा उत्सव में जो प्रसाद बनाया जाता है उससे भी ज्यादा प्रसाद हेरा पंचमी में अर्पण किया जाए। और ऐसा उत्सव मनाओ कि चैतन्य महाप्रभु डीटी के दर्शन के लिए जब जाते हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। कहां पर किए दर्शन, कौन से मंदिर में? गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर यानी नीलाचल या सुंदराचल? नीलाचल जगन्नाथ मंदिर है, तो गुंडीचा मंदिर को बोलते हैं सुंदराचल। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ सुंदराचल गए, फिर महाप्रभु लौट कर आए नीलाचल में और हेरा पंचमी का उत्सव देख रहे थे। काशी मिश्र को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु खुद यह ड्रामा को देखने के लिए आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा उनका स्वागत किया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ गीत सुनना चाहते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे और वो ऐसा बोलते थे जो महाप्रभु का अंदरूनी भाव था, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, ललिता सखी के अवतार थे, तो उनको पता था कि भगवान के हृदय में क्या भाव चल रहे हैं और वो उसी भाव से गाते जिससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो। तब चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछने लगे, यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारका विहार सहज प्रकट करे परम उदार। हालांकि भगवान जगन्नाथ ये द्वारिका धाम में बहुत सुंदर लीला करते हैं, फिर भी साल में एक बार उनकी उत्सुकता हो जाती है कि मैं वृंदावन जाऊं। फिर महाप्रभु जब बातचीत करते स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, आसपास बहुत सुंदर बगीचे थे, और फिर कहने लगे क्यों भगवान यहां गुंडीचा के पास आते हैं, क्योंकि यहां पर इतने सुंदर बगीचे हैं और ये बगीचे देखकर कृष्ण को जगन्नाथ को क्या स्मरण हुआ था, वृंदावन। भक्तों के लिए वन यानी वृंदावन, नदी यानी यमुना और पर्वत यानी गोवर्धन। कोई भी पर्वत दिखे आपको इसको गोवर्धन को याद करना चाहिए, कोई भी सरोवर दिखे जैसे यहां रंकाला भी है है ना, लास्ट टाइम महाराज जब यहाँ पे आए थे तो बता रहे थे ना, इट्स अ होली प्लेस, काल के बारे में बताया था. सो वी शुड ट्राई टू सी एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा. जैसे जैसे चश्मा, अगर आपने काला चश्मा लगाया, सब काला चश्मा तो कोई दिखेगा नहीं, लेकिन सपोज लाल चश्मा लगाया तो यू सी एवरीथिंग रेड, सब लाल दिखेगा. सो भक्त को कृष्णमय आंखों से देखना चाहिए कि हर एक चीज को कृष्ण से संबंधित देखना चाहिए, तो फिर कृष्ण को भूलेंगे ही नहीं, हर चीज में कृष्ण. स्पेशली यहाँ पर यह सेंटर इतना अच्छा है कि आज मैं थोड़े जपा के बाद थोड़े वॉक के ले गया, तो कितना सुंदर वातावरण है यहाँ पर, इतना ईजी है वृंदावन, ये सब वृंदावन की तरह है आसपास, और बरसात हो रही है, एकदम गोवर्धन लीला याद आ रही है, और ऑलरेडी हम थोड़े व्हाइट के ऊपर हैं. सो यू कैन रिमेंबर कृष्णा सो इजीली. मैं वृंदावन प्रभु के घर में गया था जब के लिए, तो वहाँ मोर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इट इज चर्पिंग पीकॉक्स, दिस इज वृंदावन. अगर आप वृंदावन के बारे में सोच रहे हो तो आप कोल्हापुर में भी हो तो वृंदावन में हो. यू आर वेयर योर माइंड इज. कई बार लोग वृंदावन में भी चेकबुक के बारे में सोच रहे होते हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं. So we should connect our mind with Krishna so much, so deeply, so that we have full chance of going back to Godhead. अच्छा full chance रहेगा भगवान के धाम जाने. किसी भी stroke जब मृत्यु है तो वृंदावन, गोवर्धन, यमुना, पुरी, मायापुर, जगन्नाथ, गौरनीता, राधा गोपीनाथ, ऐसे विचारों से अपने माइंड को एब्जॉर्ब रखना चाहिए. तभी कोई भय नहीं होगा, मृत्यु कभी भी आ जाए, निर्भय हो जाए. तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से बातचीत करने लगे कि भगवान जगन्नाथ अधिकांश समय द्वारका में रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है मैं वृंदावन देखूं, तो वृंदावन देखने के लिए वो आते हैं, क्योंकि सारे बगीचे जब वृंदावन की तरह हैं. एक्सटर्नली द लॉर्ड गिव्स एन एक्सक्यूज दैट आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन रथ यात्रा, बट एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू लीव जगन्नाथपुरी टू गो टू गुंडीचा मंदिर विच इज द रेप्लिका ऑफ वृंदावन. एक्सटर्नली भगवान लक्ष्मी देवी से जब परमिशन लेते हैं जाने के लिए, तो क्या बोलते हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं रथ यात्रा में भाग ले रहा हूं, लेकिन वास्तविक कारण क्या है कि भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछने लगे, कृष्ण या जगन्नाथ इतनी सुंदर लीला करते हैं बगीचे में, फ्लावर गार्डन्स में, लक्ष्मी देवी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? स्वरूप दामोदर ने जवाब दिया, स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नाही अधिकार. वो बोलने लगे कि वृंदावन लीला में लक्ष्मी का अधिकार नहीं है. वृंदावन लीला कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन. इन द पास्ट टाइम द वृंदावन द ओनली असिस्टेंट्स आर द गोपीज. वृंदावन लीला में सिर्फ गोपियां ही एकमात्र असिस्टेंट है. गोपी बिना नाही हरे कृष्ण मन, अपार्ट फ्रॉम गोपीज नोबडी कैन अट्रैक्ट द माइंड ऑफ कृष्ण. गोपियां कृष्ण के मन को आकर्षित कर सकती. तो इसलिए आपको मालूम होगा ब्रज लीला में एक स्थान है जहां पर हम कई बार गए हैं, जहां पर लक्ष्मी देवी ने बहुत साल तपस्या की थी. क्या नाम है उस जगह का, किसी को याद है? श्रीवन. उसका दूसरा नाम है बेलवन, श्रीवन या बेलवन. तो यह स्थान है जहां पर लक्ष्मी देवी ने हजारों साल तपस्या की. भगवान का आप यहीं पर रहो, अंदर नहीं आ सकते. यानी हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी महान है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा से हमें रासलीला में प्रवेश मिल रहा है. ये प्रीचिंग, संकीर्तन आंदोलन, हरिनाम और रासलीला दोनों एक ही है. और अगर हम प्रामाणिक रूप से नामस्मरण कर रहे हैं सच्चे दिल से, तो भगवान की उन लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर लक्ष्मी के लिए भी जाना दुर्लभ. जो भक्त चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त करते हैं वो वैकुंठ से परे भी गोलोक वृंदावन तक पहुंच सकते हैं. यहां पर लक्ष्मी देवी को भी प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी वैकुंठ तक जा सकते हैं, लेकिन मैं या आप प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से उस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जहां पर राधा और कृष्ण की गुह्य लीला होती है. इसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं, या मायापुर जो कि राधा, जो कि चैतन्य महाप्रभु का स्थान. आप देखेंगे जब फर्स्ट कैंटो में प्रथम स्कंद में एक चित्र है गोलोक वृंदावन का, सारे लोग हैं आसपास वैकुंठ, बीच में एक स्पेशल फ्लावर है, उसके अंदर राधा और कृष्ण एक तरफ है और चैतन्य महाप्रभु भी है। देखे हमने तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सर। तो जो प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत धाम लौटते हैं तो वो गौर लीला और कृष्ण लीला दोनों में भाग ले सकते। सिर्फ अगर जो भी हमारे 10 या 20 या मैक्सिमम 30 40 साल बचे हैं लाइफ के, ना थोड़े समय हम हरि नाम लेते रहें और जो भी सेवा बताई जाए करते रहें, वो निश्चित भगवान की प्राप्ति है। अगर हम अपना लक्ष्य को याद करेंगे, अगर हम लक्ष्य को याद करेंगे तो जो भी थोड़ी बहुत समस्या आती है पारिवारिक जीवन में या कई बार भक्तों के संग में भी या संस्था को आगे बढ़ाने में भी, तो उसको हम सहन कर लें क्योंकि हमारा गोल बहुत ऊंचा है, गोल बहुत ऊंचा है। जैसे एक बार मैं कुछ भक्तों के साथ मायापुर पंकज आंगरी प्रभु से मिलने गया, जो राधा माधव के एक मुख्य पुजारी है मायापुर। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि आप 35 साल से एक ही डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी वर्ष एक ही स्थान में, भारत छोड़ के ही नहीं गए, 35 ईयर्स हो गए, आपके क्या रहस्य है इस सेवा को उस तरह से तन्मयता के साथ दिन ब दिन साल ब साल करते रहने? तो पंकज आंगी प्रभु बोले इसके दो आंसर, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और अंतरंग। मैंने पूछा क्या है? तो बाह्य कारण है क्योंकि मैं हेड पुजारी हूं तो जितना चाहिए महाप्रसाद मिल जाता है, जितनी बार राधा माधव खाते हैं उतनी बार मैं भी खाता हूं, एक्चुअली वो बहुत कम खाते हैं, लेकिन वो बोल रहे थे, सब लोग हंसने लगे। बोले इंटरनल बताओ अभी। बोले कि जब आप एक जहाज में हो, समझो हवाई जहाज में या समुद्र जहाज में, अगर आप समुद्र जहाज में हो और आपको कैप्टन पसंद नहीं है, कैप्टन का व्यवहार अच्छा नहीं है, या आसपास जो शिप के अंदर दूसरे लोग हैं वो पसंद नहीं है और शिप ऑलरेडी निकल चुकी, तो आप बोलोगे कि ये मुझे पसंद नहीं है, चलो मैं बाहर छलांग लगा देता हूं, उसमें क्या फायदा है? अभी शिप चल चुकी है, ये शिप जा रही है भगवान के धाम, और आसपास के लोग अच्छे नहीं है, उसके दूसरे भक्त, क्योंकि सबसे सबके साथ तो ऐसा नहीं कि सबका स्वभाव एक जैसा होगा, अगर किसी का स्वभाव हमारे स्वभाव से मैच नहीं भी होता, उसके कारण भक्ति को क्यों छोड़ना, उसके कारण भक्तों का संग क्यों छोड़ना? एक्चुअली कहीं भी आप जाओ, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है एक मटीरियल वर्ल्ड जो है, ये इस जगह ही ऐसी है कि कोई ना कोई समस्या है। प्रभुपाद एक बार हयग्रीव प्रभु को एक लेटर में लिखते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट अ यूटोपियन सिचुएशन, यूटोपियन इंग्लिश में यूटोपियन यानी एकदम ही आदर्श, सब कुछ एकदम रंगमय है, चिंतामणि कल्प वृक्ष है, कोई झगड़ा नहीं है, सब तृणादि सुनिश्चित है, वो अभी होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। देर इज नो अदर वे, जो कुछ सा तरीका है ही नहीं, तो पंकज जी को बता रहे थे। इसलिए मैं, हालांकि मेरा भी बहुत मतभेद होते हैं मेरे अथॉरिटी से और मेरे को भी बहुत सारी दूसरी इच्छाएं होती हैं करने की, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि मैं शिप में हूँ, शिप में जो कैप्टन है उनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ और भगवत धाम वापस लें। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आयु बची है हमारी, 20, 30, 40, या आप में से कोई नहीं इसके लिए 50-60 साल है, अगर 30-40 साल कष्ट भी हो और भगवान की प्राप्ति हो ज़्यादा अच्छा है, या अगर 30-40 साल बहुत सुख से रहें और अगले जन्म में पक्षी या पशु बने या मानव शरीर फिर से, तो यू शुड कीप दिस गोल इन माइंड, गोल ऑफ वृंदावन, ये हमारा लक्ष्य है। तो उससे जो भी हमारे साधना में तकलीफ आ रही है, जो भी हमारे वैयक्तिक शुद्धिकरण में तकलीफ आ रहे हैं, उसको हम बड़े आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। लॉर्ड्स मर्सी, लॉर्ड्स मर्सी। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं ले जाते भगवान जगन्नाथ, और स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि वृंदावन लीला में सिर्फ गोपियों को प्रवेश है, शिवजी भी नहीं जा सकते, शिवजी भी नहीं जा सकते। आपको याद होगा एक बार हम यात्रा में राधानाथ स्वामी महाराज के साथ मानसरोवर गए थे, आप में से कोई भक्त थे मानसरोवर? आप याद है मानसरोवर, यहाँ पर शिवजी गोपी बने थे। एक बार शिवजी ये बहुत इच्छा थी कि मैं रासलीला में भाग लूं, तो उन्होंने कंसल्ट किया भक्तों से, उनको बताया गया आप ये आप गोपी का शरीर धारण करोगे तो आप रासलीला में जा सकते हैं, क्योंकि गेट पे चेकिंग होती है, सिर्फ गोपियों का अलाउड होता है। तो बोला गोपी कैसे बनना है? तो बोला आप ये मानसरोवर में स्नान करो अब गोपी बन जाओ। तो शिवजी ने स्नान किया और वो गोपी बन गए, शिव गोपी। और वो रासलीला में अंदर चले गए, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने सांप निकालना भूल गए। थोड़ी देर बाद किसी गोपी ने राधा रानी को बताया एक नई गोपी आई है और उसके गले में सांप है। तो तुरंत राधा रानी ने पहचान लिया शिवजी को। तो शिवजी ने बहुत निवेदन किया कि मुझे आपकी लीला में भाग लेने दो, क्योंकि शिवजी बहुत हाई डिवोटी हैं, लेकिन राधा रानी और गोपियों का तो स्तर हजारों गुना ज्यादा। एक पुराण में बताया गया कि नारद और शिव और ब्रह्मा भी गोपियों की प्रेम को नहीं जान सकते। एक ऋषि के ब्रह्मा शिव के बारे बताया गया कि हजारों साल तपस्या करने पर भी गोपी प्रेम को नहीं समझ सकते। शिवजी को बोला गया बहुत निवेदन करने पर, ठीक है आप दरवाजे पर रह सकते हो लेकिन आप रासलीला में अंदर नहीं आ सकते। तो हम जान सकते हैं कि वृंदावन लीला कितनी दुर्लभ है। इसीलिए कहा जाता है अनार्पितम चरिम चिरा करुणा अवतार। चैतन्य महाप्रभु का अवतार है वो चीज देने के लिए जो और कोई अवतार नहीं दे रहा, और वो क्या है? व्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो एक्चुअली वृंदावन की लीला है। कृष्ण वृंदावन जा रहे हैं, राधा रानी कृष्ण को वृंदावन ले जा रहे, रथ खींचकर उनको वृंदावन ले जा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं स्वरूप दामोदर को, द कार फेस्टिवल इज एन एक्सक्यूज, कृष्ण एक्चुअली गोज देयर टू सी वृंदावन विद सुभद्रा एंड बलराम। ऑल द पास्ट टाइम विद द गोपीज दैट टेक प्लेस इन द गार्डन आर कॉन्फिडेंशियल एक्सटेसिस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड नोबडी नोज देम। ये जो सब लीला बताई गई है ये गुह्य लीला है और कोई नहीं जानता। फिर चैतन्य महाप्रभु ने और एक प्रश्न पूछा स्वरूप दामोदर से, अतएव कृष्ण प्राकट्य नाही किछु दोष तबे केना लक्ष्मी देवी करे एते रोष। सिंस देर इज नो फॉल्ट इन कृष्णास पास टाइम्स, वाई डस लक्ष्मी बिकम एंग्री? लक्ष्मी देवी क्यों क्रोधित होते हैं? कृष्ण वृंदावन जा रहे हैं, उनका वृंदावन जाने का अधिकार है, लक्ष्मी देवी क्यों नाराज? तो स्वरूप दामोदर बताते हैं कि एक जो स्त्री या कोई युवती अगर किसी से प्रेम करती है तो वो देखते हैं कि जिससे वो प्रेम कर रहे हैं अगर उसको निग्लेक्ट करे, अगर उसकी अवहेलना करे तो उसको बहुत क्रोध आ जाता है। तो ऐसे लक्ष्मी देवी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मुझे छोड़कर भगवान वहां पर चले गए, निग्लेक्ट कर रहे हैं मुझे। जब वो ऐसे बातचीत कर रहे थे, जगन्नाथ मंदिर के पास में ही था। अब भगवान जगन्नाथ तो गुंडीचा में बहुत दूर है रथ यात्रा के एंड पे, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु इधर खड़े हैं जगन्नाथ साइड में। और उस समय जब वो बातचीत कर रहे थे देखा कुछ भक्त पालकी में लक्ष्मी देवी को लेकर आ रहे। लक्ष्मी देवी ने बहुत सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं और पालकी को लोगों ने घेरा हुआ है छत्रों से चवर से। आगे कुछ स्त्रियां युवतियां नृत्य कर रहे हैं लक्ष्मी देवी के ग्रुप के, लक्ष्मी देवी के असिस्टेंट्स भी लड़कियां हैं। और कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ संगीत गा रहे हैं, और मेड सर्वेंट जो दासी हैं कुछ हैं जो पिक्चर जार जग लेके जा रहे हैं, कुछ के पास चवर है, किसी के पास डिब्बी है, उस डिब्बी में तांबूल रखे हैं। और उस सब दासियों ने बहुत अच्छे वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण किए। और लक्ष्मी देवी गेट पर आके बहुत क्रोध प्रकट कर रहे हैं। फिर वो मंदिर के मेन गेट पे आए, वहां पर जगन्नाथ के सेवक थे। जगन्नाथेर मुख्य मुख्य यत भृत्य गण लक्ष्मी देवी र दासी गण करे न बंधन। जितने भी जगन्नाथ के मुख्य सेवक थे सबको गिरफ्तार कर दिया लक्ष्मी देवी के सेविकाओं ने। बांधिया आनिया पड़े लक्ष्मी चरणे चोर जेन दंड करी लय नाना धने। दासियों ने क्या किया कि जगन्नाथ के सेवकों को गिरफ्तार कर लिया, हैंडकफ कर दिया, उनको हाथों में बेड़ियां बांध दी और उनको जबरदस्ती लक्ष्मी देवी के सामने आके गिरा दिया कि आप प्रणाम करो, माफी मांगो। जैसे चोर अगर किसी चोर को पकड़ा जाए उसकी सारी संपत्ति छीनी जाए, तो ऐसे ही लक्ष्मी देवी के सेविकाएं जो हैं वो जगन्नाथ के सेवक को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब सब सेवकों ने प्रणाम किया लक्ष्मी देवी को और उनको डांटा गया और उनको बहुत बुरे शब्द बोले गए, चेस्टाइज किया गया, उधर चैतन्य महाप्रभु वहां पर सब देख रहे थे। लक्ष्मी संगे दासी गणेरा प्रागलभ्य देखिया, हास्य महाप्रभु गण मुखे हस्त दिया। और महाप्रभु और उनके पार्षद मुख को हाथ से छिपाकर या ढक के वो मुस्कुराने लगे। उस समय स्वरूप दामोदर कहने लगे कि जैसा ये जो इगोइस्टिक प्राइड है लक्ष्मी देवी में देखा गया वो कहीं नहीं देखा जाता, मैंने कहीं नहीं देखा। और फिर बहुत डिटेल में बताया गया कि ऐसा प्राइड सत्यभामा में देखा गया जो कृष्ण की रानी थी, और वृंदावन के गोपियां हैं कभी कभी उनमें भी एक दिव्य प्रकार का अभिमान होता है, इसलिए कृष्ण वृंदावन में रासलीला छोड़कर चले जाते हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक और प्रश्न पूछा स्वरूप दामोदर से कि वृंदावन में कितने प्रकार के अभिमान होते हैं, कितने प्रकार के प्राइड होते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने बताया कि जो गोपियों का प्राइड है वो एक नदी के समान है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी मराठी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कोई नदी होती है और उसकी उसके छोटे छोटे शाखा हो जाते हैं, उपनदी। हाँ उपनदी, तो बहुत सारे उपनदियां हैं। तो अभी ये जो आगे का सेक्शन है बहुत ही हाई है क्योंकि हम स्तर पर नहीं है, मैं थोड़ा सा स्किप करके आगे जाऊंगा। इसमें बताया गया कैसे गोपियों का प्रेम होता है अलग अलग प्रकार से, राधा रानी के प्रेम का वर्णन किया गया। ये सब सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और स्वरूप दामोदर से बोले आप और बोलिए और बोलिए। फिर स्वरूप दामोदर राधा रानी के प्रेम के बारे में बोलने लगे कि राधा रानी का प्रेम इतना एडवांस्ड है, इट इज टेन टाइम्स प्योरर देन गोल्ड, सोने से भी ज्यादा शुद्ध है। लोहा और सोना में क्या अंतर है, दोनों मेटल है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इस संसार में जो तथाकथित प्रेम होते हैं वो लोहे के समान, लेकिन गोपियों का जो गोपीनाथ से प्रेम है वो सुवर्ण के समान। फिर और वर्णन किया गया राधा रानी के प्रेम के अलग भाव हैं, इसका वर्णन किया गया। उन्माद शंख त्रास अवित चिंता वितरक्त निद्रा सुप्ति, अभी हमें भी निद्रा आती है सुप्ति होती है लेकिन वो डिफरेंट। जल्प प्रति जल्प, ये सब दीज आर वेरी हाई। इसका भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से और पूछने लगे राधा रानी के प्रेम के बारे में और स्वरूप दामोदर और बताने लगे। इस तरह से पूरा अध्याय का जो आखिरी भाग है सब इसी पर है। ये सब होने के बाद में श्रीवास ठाकुर वहां पर आए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझने में आसान है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो लास्ट सेक्शन है श्रीवास ठाकुर और दामोदर पंडित आपस में बात कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर बोले दामोदर पंडित को, ये देखो लक्ष्मी कितने सुंदर उन्होंने आभूषण धारण किए, कितना उनका ऐश्वर्य है, और आप सब वृंदावन की क्यों पूजा करते हो, वृंदावन में क्या है, व्हाट इज द ऑपुलेंस, फ्यू फ्लावर्स एंड ट्विग्स एंड सम मिनरल्स एंड पीकॉक फेदर्स, मोर का पंख है, गुंज के पौधा है और कुछ मिनरल्स को क्या बोलते हैं, कुछ खनिज हैं जो पर्वत से हैं, कुछ फूल हैं, तो क्या ऐश्वर्य है उसमें, कुछ भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर को छोड़ के भगवान जगन्नाथ जब गुंडीचा जाते हैं तो लक्ष्मी देवी को बहुत ईर्ष्या होने लगती है, रेस्टलेसनेस महसूस होता है। लक्ष्मी देवी सोचती है कि यहाँ पे सब कुछ है, भगवान जगन्नाथ ये छोड़ के यहाँ कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन में कुछ भी नहीं है, कुछ छोटे छोटे ट्विग्स लीव्स, ये क्या ऐश्वर्य है। और लक्ष्मी देवी विशेष करके जगन्नाथ को एक क्या बोलेंगे, लाफिंग स्टॉक को क्या बोलेंगे, जगन्नाथ का मजाक करने के लिए वो जानबूझ के और ऐश्वर्य के साथ जाते हैं। तो जगन्नाथ के जो दासियां हैं वो जगन्नाथ के सेवकों को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो पूछते हैं, व्हाई डिड योर लॉर्ड जगन्नाथ एबेंडन द ग्रेट ऑपुलेंस ऑफ लक्ष्मी एंड फॉर द सेक ऑफ फ्यू लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स गो टू सी राधा रानी। जगन्नाथ ने ऐसा क्यों किया, इतना सारा ऐश्वर्य छोड़कर थोड़े पतियों और फूल के लिए राधा रानी के गार्डन में क्यों गए? कृष्ण तो बहुत स्वामी है, कृष्ण तो बहुत एक्सपर्ट है, क्यों उन्होंने ये सब चीजों को त्याग दिया? और ये सब लक्ष्मी के दासियां जगन्नाथ के दासों को डांट के बोल रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है ये? मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं एक्चुअली, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मेन लीला तो सबको मालूम है, कल रात को मैंने डिस्कस किया था, लेकिन ये थोड़ा सा आगे का भाग है जो। तो जगन्नाथ के लक्ष्मी के दासियां जगन्नाथ के दासों को बोले, अपने स्वामी जगन्नाथ को यहां पर लेकर आओ, उनको 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 वापस ले आओ। तो जब जब इस तरह से बोल रहे थे तो लक्ष्मी के दासियां सब जगन्नाथ के सेवकों को प्रणाम करने के लिए लक्ष्मी देवी के पास ले आए और उनको फाइन दिया, फाइन किया गया, फोर्स किया गया। और रथ यात्रा रथ का जो कार्ट था, रथ का जो पहिया, रथ का जो पूरा रथ को लक्ष्मी देवी की दासियां जो हैं वो जोर लकड़ी से पीटने लगे कि इसी रथ के ऊपर भगवान गए इसलिए हम इसको पीटेंगे। और फिर जगन्नाथ के सेवकों को एकदम चोरों की तरह व्यवहार किया गया। तो अंत में जगन्नाथ के सेवकों ने देखा इतनी पिटाई हो रही है, अब तो बचना चाहिए। वहां जो लक्ष्मी देवी को बोले, काली आनी दीवी तोमार आगे जगन्नाथ, अब हमें छोड़ दो, कल ही जगन्नाथ को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, हमें मुक्त कर दो। तो लक्ष्मी देवी फिर खुश हो गए, वो अपने अपार्टमेंट में वापस चले गए। और ये लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य है, आपने सुना था पहले वृंदावन प्रभु, ये मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं, हालांकि चैतन्य चरितामृत मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन समा ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, लेकिन ये भाग आपने सुना होगा क्योंकि एक बार जब हम राधानाथ महाराज के साथ वृंदावन यात्रा में गए थे, कालिया घाट में यात्रा की शुरुआत होती है और मैं और वृंदावन प्रभु बाजू में बैठे थे, उसमें मुझे याद है, तो समय एक बार श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर का वार्तालाप वर्णन किया गया था, वो सुना आपने? नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए कोई बात। श्रीवास ठाकुर स्वरूप दामोदर से मजाक करते हैं, श्रीवास ठाकुर थोड़ा वैकुंठ का साइड लेते हैं, स्वरूप दामोदर वृंदावन का। आप कौन से साइड में है? वृंदावन। भक्ति धन ठाकुर बोलते हैं कि हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम ऐश्वर्य भाव से अट्रैक्ट नहीं हो, यानी अगर आप भगवान के धाम जा भी रहे हो तो वृंदावन वैकुंठ से भी आगे एक अयोध्या प्लानेट है, और अगर आपका मन राधा कृष्ण में डायरेक्टली नहीं लगा है तो आप शायद अयोध्या में या वैकुंठ में रुक जाओगे। तो हमें ख्याल रखना है कि हमारा फ्लाइट सीधा गोलोक तक जाए, बीच में वैकुंठ भी नहीं और अयोध्या भी नहीं और कोल्हापुर तो बिल्कुल नहीं। जब तक है तब तक ठीक है, प्रीचिंग के लिए ठीक है, हमारा मन वृंदावन होना चाहिए, गोलोक वृंदावन, इसलिए सो मच अटैच वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरे को एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि पहले वो वृंदावन में गए थे, प्रभुपाद से मिलने से पहले वो वृंदावन से अट्रैक्टेड थे, जन्माष्टमी के दिन ही वृंदावन में पहली बार गए। आपने सुनी है कहानी, वो ट्रेन से जा रहे थे अंबरनाथ की तरफ और ट्रेन रुक गई एक स्टेशन पे, ट्रेन वो थर्ड क्लास बोगी था, अभी तो फर्स्ट और सेकेंड होता, उसमें थर्ड क्लास भी था, और इतनी भीड़ थी तो महाराज खिड़की से बाहर आए देखने के लिए कौन सा स्टेशन है, और ट्रेन निकल पड़ी तो देखा तो स्टेशन मथुरा था और उस दिन जन्माष्टमी थी। तो महाराज स्वाभाविक रूप से यमुना के किनारे जाते, यमुना के किनारे लेटते, मतलब ये जो आकर्षण है वृंदावन के प्रति, ये एडवांस डिवोटी का लक्षण है। तो जब महाराज फिर न्यू वृंदावन में ज्वाइन हुए फुल टाइम, तो उस समय जो वहां के लीडर थे उन्होंने मना किया कि आप वृंदावन नहीं जा सकते, परमिशन नहीं आपको, तो 10 साल ऑलमोस्ट वृंदावन नहीं गए। तो महाराज बोलते मैं प्रसाद लेने के बाद जब थोड़ी देर लेटता था तो वृंदावन के सारे स्थानों को याद करता था, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, श्याम सुंदर, दामोदर, गोकुलानंद, राधा रमन, गोपेश्वर महादेव, बरसाना, नंदग्राम, गोवर्धन, ऐसे सब स्थानों को याद करना चाहिए। आप भी याद कर सकते हैं, साथ में फोगला आश्रम भी या बांके बिहारी के सामने लस्सी की दुकान है वो अभी 27 अक्टूबर को हम वृंदावन जाने वाले हैं, मेरे ख्याल से यहाँ भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, तभी से आप मानसिक रूप से रोज सोच सकते हैं कि कब हम जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कहाँ मंदिर देखेंगे, इस मेडिटेशन, उससे पहले अगर मृत्यु आ गई तो हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे वृंदावन। लेकिन मैं लेक्चर की शुरुआत में बता रहा था कि एक डिवोटी मायापुर जा रहे थे डिवोटीज के साथ में, सेम ट्रेन में यात्रा से पहले ही उन्होंने कोलकाता पहुंचने से पहले ही शरीर त्याग दिया, और महाराज उनके बारे में बोल रहे थे कि ही रीच्ड बिफोर ऑल ऑफ यू, उनकी इतनी उत्सुकता थी। जैसे डिवोटी को डेथ का कोई डर नहीं होता, डेथ मतलब या तो गोलोक वृंदावन या कहीं और जन्म लेके फिर से प्रीचिंग, फिर से सेवा, कोई कोई डर नहीं भक्त को, जो भी हो कृष्ण की इच्छा। वैसे भी ये कृष्ण की इच्छा होने ही वाली है तो लड़के क्या फायदा एनीवे झगड़ा करने से फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है क्या होना है, कहां पे आपकी मृत्यु होनी है वो भी लिखा है, किस स्मशान घाट में अंतिम संस्कार है वो भी लिखा होगा, तो व्हाट इज द गुड ऑफ एंग्जाइटी, सब कुछ स्पॉन्सर्ड है एवरीथिंग इज डिसाइडेड, एवरीथिंग डिसाइडेड, कब तक प्रवचन चलना है वो भी डिसाइडेड है हरी हरी सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। तो श्रीवास ठाकुर ने आपको बता रहा था कि जब एक यात्रा में श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर की चर्चा चल रही थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें वृंदावन का गुणगान किया गया। आप ध्यान से सुनिए वृंदावन के बारे में, वृंदावन वृंदावन
वृंदावन वृंदावन।
चैतन्य महाप्रभु जब जब संन्यास लेने के बाद एक्सटेसी में आ गए थे, पुकार रहे थे वृंदावन वृंदावन कृष्ण कृष्ण, ऐसे एक्सटेसी में मग्न थे। कभी कभी डिवोटी को थोड़ा फ्री टाइम रखना चाहिए, जब ये साधना सोला माला हो जाए ऑफिशियल और पढ़ हो जाए और मैनेजमेंट और घर की सेवा हो जाए, और ऐसे ही भगवान के सामने जाके बोला जी कृष्णा कृष्णा वृंदावन गोवर्धन, कब मुझे कृष्ण मिलेंगे, कृष्णा कब मुझे प्राप्ति होगी, कृष्णा कृष्णा जल्दी मुझे अपने चरणों में स्थान दो, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कभी कभी। उस समय तो मैं भी दिन में 15 मिनट या हफ्ते में एक घंटा ऐसे, यू शुड क्राई टू कृष्ण रेगुलरली, कृष्णा मेरे को आपकी कृपा चाहिए, मुझे दया करो कृष्ण, मैं बहुत पतित हूँ, मेरा नंबर फर्स्ट है, पूरे जगत में मेरे समान कोई पतित नहीं है, यू शुड प्रे लाइक दैट, देन यू विल गेट मर्सी वेरी क्विकली। एक होता है जैसे अभी आपको लाइन 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 में टिकट लेना है, कई बार ऐसा होता है आपको कोल्हापुर स्टेशन या मीरज स्टेशन पर टिकट लेनी है तो लाइन होती है बहुत, लेकिन अगर आप बोलते हैं मेरी ट्रेन छूट रही है तो नहीं भी छूट रही, वैसे बोलोगे आप तो कई बार लोग अलाउ करते हैं ना आगे से, तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण मेरा जीवन बहुत छोटा है, प्लीज जल्दी मुझे शुद्ध बना दो, मुझे जल्दी शुद्ध बना दो, मैं एक भौतिक संसार में फिर से नहीं आना चाहता, मुझे वापस वापस अपने चरणों में स्थान, यू शुड प्रे लाइक दिस एवरी डे, कृष्णा विल आंसर योर प्रेयर्स, कृष्णा विल मेक यू प्योर। तो स्वरूप श्रीवास ठाकुर और स्वरूप दामोदर का वार्तालाप सुनिए, श्रीवास ठाकुर वैकुंठ साइड में है और स्वरूप दामोदर गोस्वामी गोलोक वृंदावन। तो श्रीवास ठाकुर बोले स्वरूप दामोदर को, ये गोपियां क्या करती हैं, आपकी गोपियां पूरे दिन भर क्या करती हैं, दूध गाय का दूध निकालना, गोबर से सफाई करना, ये क्या बड़े जान है, दूध से फिर दही बनाना, फिर दही से फिर मक्खन बनाना, व्हाट इज दिस, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट दिस, और हमारी लक्ष्मी को देखो इतने बड़े आसन पे बैठे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं उनके सर्वेंट्स उनके दासियां, और ज्वेल्स के बने हुए मणियों के बने हुए जेम्स के बने हुए आसन पर हैं, क्योंकि श्रीवास ठाकुर यहां पर नारद मुनि के मूड में है। एक्चुअली श्रीवास ठाकुर गौरलीला में कृष्ण लीला में कौन है, नारद मुनि। तो चैतन्य महाप्रभु के सारे सर्वेंट्स हंसने लगे, वो जानते थे मजाक में बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रभु कहे श्रीवास तोमार नारद स्वभाव। चैतन्य महाप्रभु बोले, श्रीवास योर नेचर इज एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ नारद मुनि, आपका नारद मुनि जैसे स्वभाव है, ऐश्वर्य भावे तोमार ईश्वर प्रभाव, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ऑपुलेंस इज हैविंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन यू, आपके ऊपर भगवान का ऐश्वर्य का भाव आ गया, इसलिए आप वैकुंठ की प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन स्वरूप दामोदर शुद्ध ब्रजवासी, दिस स्वरूप दामोदर गोस्वामी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ वृंदावन, वृंदावन के वासी, ऐश्वर्य न जाने ऐश्वर्य नहीं जानते, शुद्ध प्रेम भासी, शुद्ध प्रेम। अभी ये देवकी में और यशोदा में थोड़ा अंतर है, देवकी भी कृष्ण की माता है और यशोदा भी कृष्ण की माता है, दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, देवकी और यशोदा दोनों में वात्सल्य प्रेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यशोदा वृंदावन भाव में, देवकी में फिर भी थोड़े ऐश्वर्य के भाव है, जब कृष्ण प्रकट हुए तो उनका गुणगान कर रहे, जो जो यशोदा का प्रेम है वो देवकी से भी ज्यादा ऊंचा है, ब्रज ब्रज की जो ब्रज की जो भूमि है वो सबसे श्रेष्ठ है, और ब्रज में भी वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है, और वृंदावन भी सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन, और गोवर्धन में विशेष राधा प्रेम है, भक्ति में से अलग अलग ग्रेडेशन से गोवर्धन स्पेशली गौड़ीय वैष्णवों का बहुत प्रिय है। हमारे जितने भी आचार्य हैं वो गोवर्धन में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं अपने श्लोक में, निज निकट स्थान देही गोवर्धन त्वम। इनफैक्ट राधानाथ महाराज की बहुत सालों से इच्छा थी कि हम लोग वृंदावन यात्रा में कुछ दिन गोवर्धन में रहें, क्योंकि गोवर्धन से बरसाना नंदग्राम बहुत ईजी है। और इस बार ऐसा हुआ कि भगवान के अरेंजमेंट से जब हमारे मैनेजर से यात्रा में अरेंजमेंट करने गए तो फोगला आश्रम में बुकिंग किया था 14 दिन के लिए, तो ये बुकिंग करने गए तो वहां के मैनेजर्स ने बताया कि आपको सिर्फ 7 दिन कमरा मिल सकता है क्योंकि बाकी 7 दिन हमारे ट्रस्टीज ने बुकिंग किया है, इसलिए नेचुरली बाकी 7 दिन हम लोग फिर गोवर्धन में रह रहे हैं। तो गोवर्धन में रहने की जगह कम है, तो किसी को रूम मिला दान घाटी के पास, किसी को जतिपुरा के पास, मतलब पूरा जो गोवर्धन में चारों और 21 किलोमीटर में सब स्प्रेड आउट है, और फिर भी जगह नहीं है, इसलिए 500 डिवोटीज टेंट में रहेंगे, जो ब्रह्मचारी और जो प्रभु जी से जो है वो टेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब यात्रा ले जाते थे तो टेंट्स में रहते थे, उनका ऐसा होता था कि एक एडवांस पार्टी होती थी, तो एडवांस पार्टी यानी जैसे शाम के समय अभी सुबह निकलना है तो कुछ लोग पहले ही आगे जाके दूसरा टेंट डाल देते थे, फिर एक पार्टी जो टेंट को उखाड़ देते थे, फिर इस तरह से बहुत एडवेंचरस है। तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ मानसिक रूप से अक्टूबर 27 के लिए वृंदावन यात्रा। आपको मालूम है ना, फर्स्ट वीक हम लोग वृंदावन में, सेकेंड वीक गोवर्धन में, फर्स्ट टाइम विल बी स्टेइंग इन गोवर्धन। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम गोवर्धन में ही हमेशा रहें। आपने देखा गोवर्धन के पास डिवोटीज छोटे छोटे पत्थर रखते हैं, ऐसे घर बनाते हैं, दैट इज सिम्बॉलिक दैट कि मेरे को गोवर्धन के पास में ही रहना है। हमारा गौड़ीय वैष्णव का बेस्ट स्थान गोवर्धन है, इतना गोवर्धन प्रिय है चैतन्य महाप्रभु को, प्रभुपाद को, कि प्रभुपाद आखिरी दिनों में बोले मुझे गोवर्धन परिक्रमा करनी। प्रभुपाद ऑलरेडी 80 वर्ष के थे, उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां रह गए थे, कोई चलना मुश्किल हो रहा था, कोई चरणामृत भी ऐसे भक्त दे रहे थे, उनको पालकी में ले जा रहे थे कि फिर मुझे गोवर्धन परिक्रमा करनी। तब बाद में भक्तों के बोलने पर प्रभुपाद जी गए नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनका चेरिश्ड एम है कि आई शुड बी नियर गोवर्धन। और गोवर्धन की प्राप्ति होती है रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य हैं, वेरी ईगर, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे गिरिराज गोवर्धन के पास स्थान मिले, जब तक जब भी भगवान चाहे तभी, इट शुड बी अवर प्रेयर। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्रीवास ठाकुर का जवाब दिया। स्वरूप दामोदर बोले, स्वरूप कहे श्रीवास शुन सावधाने, वृंदावन संपद तोमार नहीं पड़े मने। माय डियर श्रीवास, प्लीज हियर मी विद अटेंशन, यू हैव फॉरगॉटन द ट्रांसेंडेंटल ऑपुलेंस ऑफ वृंदावन, आप वृंदावन के ऐश्वर्य को भूल गए। वृंदावन सहज के जे संपत सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। ऑपुलेंस ऑफ वृंदावन इज लाइक एन ओशन, वृंदावन का जो ऐश्वर्य है वो सागर के समान है, और द्वारका और वैकुंठ वो क्या है, एक बूंद के समान। यानी हालांकि द्वारका भी अच्छा है, वैकुंठ भी अच्छा है, लेकिन वृंदावन ओशन के समान। वो कहानी आपको मालूम है, एक बार भगवान कृष्ण प्रयाग को घोषित करते हैं, प्रयाग आप तीर्थ राज हो, आप सब तीर्थों के राजा घोषित करते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, और सारे तीर्थ आते हैं उनको अभिवादन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कि प्रयाग आज से सारे तीर्थों का राजा है। तो प्रयाग बहुत खुश हो जाते हैं, और अगले दिन भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि सारे तीर्थ आए, लेकिन एक ही दुख है कि वृंदावन धाम नहीं आए। अगर वृंदावन धाम भी आकर घोषित करता कि मैं तीर्थों का राजा हूं तो मुझे और अच्छा लगता। तो भगवान गोपीनाथ मुस्कुरा के बोले, प्रयाग मैंने तुम्हें सारे तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन इज माय होम। प्रभुपाद जी बोलते थे, वृंदावन इज माय होम, मायापुर इज माय प्लेस ऑफ वर्शिप, एंड बॉम्बे इज माय ऑफिस। हमारे लिए भी वृंदावन घर है, मायापुर पूजा का स्थान है, और कोल्हापुर ऑफिस है। ऑफिस यानी जहां से घर में जाने का रास्ता मिलता है, यहाँ पे थोड़ा बिजनेस किया जाता है घर वापस जाने के लिए. तो यू शुड ऑलवेज थिंक दैट वृंदावन वृंदावन दैट इज माई रियल होम. वी मे नॉट बी एबल टू गो क्योंकि आजकल वृंदावन में रेट्स ज्यादा है कि मकान खरीदी करना भी मुश्किल है. इफ यू वॉन्ट टू स्टे ऑल्सो बट एटलीस्ट एट हार्ट वी शुड बी थिंकिंग ऑफ वृंदावन वृंदावन देन वी विल गो टू वृंदावन या जगन्नाथपुरी या मायापुर. यू ऑलवेज थिंक ऑफ दिस प्लेस. तो फाइनली चैतन्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलने लगे कि कृष्ण स्वयं भगवान है. परम पुरुषोत्तम कृष्ण स्वयं भगवान. कृष्ण जहां दाही ताही वृंदावन धाम. कृष्णस ऑल ऑपुलेंसेस आर एग्जिबिटेड इन वृंदावन. कृष्ण इन द्वारका इज परफेक्ट. कृष्ण इन मथुरा इज मोर परफेक्ट एंड कृष्ण इन वृंदावन इज मोस्ट परफेक्ट. कृष्ण द्वारका में पूर्ण है. ऐसा नहीं कि द्वारका में कम है कृष्ण, लेकिन मथुरा में और भी ज्यादा है और वृंदावन में और भी ज्यादा है. क्यों? वृंदावन की भूमि जो है वो चिंतामणि की बनी है और उनका पूरा सरफेस जो है ज्वेल्स का बना हुआ है. और ये चिंतामणि जो गोपियां हैं ब्रजवधु हैं उनके चरणों में जो नुपुर हैं वो भी चिंतामणि के बने हुए हैं. वृंदावन एक ऐसा स्थान है, वृंदावन के वासी और कुछ चाहते ही नहीं है, वो सिर्फ उस कल्पवृक्ष के फूल और फल चाहते हैं, उसी से संतुष्ट हैं. और वृंदावन में जो गाय हैं वो कामधेनु गाय हैं और उनकी संख्या भी असीमित है और वो एक वन से दूसरे वन भ्रमण करते हैं और सबको दूध प्रदान करते हैं. वृंदावन में सहज लोकेर कथा जहां दिव्य गीत. वृंदावन में जो भी कोई व्यक्ति बोलता है सिर्फ म्यूजिक होता है. कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी सखी. और सहज गमन करे जैसे नृत्य. कोई चलता नहीं है वहां पर, सब नृत्य करते हैं. वृंदावन में सब नृत्य होते हैं. सर्वत्र जल अमृत समान. और जो जल है जो पानी है वो किसके समान है? अमृत के समान. चिदानंद ज्योति जहां मूर्तिमान. और ट्रांसेंडेंटल ब्लिस इज परसीव्ड देयर इन इट्स मूर्तिमान फॉर्म. भगवान का मूर्तिमान स्वरूप आनंद दिखाई पड़ता है. गोपियां वहां पे लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर हैं. और वृंदावन में कृष्ण के साथ ही हमेशा मुरली होती है. अब ये जो वर्णन मैंने चार श्लोकों में किया कि वहां पर पानी अमृत के समान है और चलना नृत्य के समान है और लक्ष्मी जो है वो वैकुंठ से भी ज्यादा, गोपियां लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर हैं, ये सब एक श्लोक में आ जाता है. और कौन सा श्लोक है? ब्रह्म संहिता. कौन सा श्लोक है? कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी. हाँ अच्छा. श्रीय कांता कांता परमा पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमि चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च. द डांसर्स ऑफ वृंदावन आर सुपर गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. द एंजॉयर ऑफ वृंदावन द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण. द ट्रीज आर विश फुलफिलिंग ट्री. लैंड इज मेड ऑफ टच स्टोन. वॉटर इज नेक्टर. Talking is singing, walking is dancing, and constant companion is the flute. The effulgence of transcendental bliss is experienced everywhere in Vrindavan. So, gopiyan jo Lakshmi se bhi zyada sundar hain, vriksh kalpa vriksh hain, bhumi chintamani hai, pani amrit ke saman hai, aur chalna nritya ke saman hai. To is tarah se ye sab varnan Vrindavan ka varnan karne lage kamdhenu ke bare mein. शुनी महा शुनी प्रेमा वशे नृत्य करे श्रीनिवास कक्षताली बजाय करे अट्ट अट्ट हास. श्रीनिवास बिगेन टू डांस इन एक्सटेटिक लव. ही वाइब्रेटेड साउंड्स बाय स्लैपिंग हिज आर्मपिट्स विद द पाम्स ऑफ हिज हैंड. वो हंसने लगे क्योंकि श्रीनिवास सुनना चाहते थे और वो हंसने लगे और अपने हाथों से अपने भुजाओं के पास पीटने लगे और जोर से हंसने लगे. हरी हरी. चैतन्य महाप्रभु ये दोनों के वार्तालाप को सुन रहे थे, इतने प्रसन्न हो गए. भगवान ने जब श्री स्वरूप दामोदर का गीत सुना, ये जो वर्णन सुना वृंदावन का, वो इतने खुश हो गए कि वो नाचने लगे, खुशी से डांस करने लगे. और महाप्रभु नाचते नाचते बोले, बोल 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 बोल, गो ऑन सिंगिंग, बोलते जाओ. फिर भगवान ने अपने कानों को और भी ज्यादा, जैसे कई बार आप गाय के पास जाके कुछ बोलो या देखो तो कई बार गाय को देखा है सिर्फ कान को एकदम ऐसे कर देते हैं, या हिरण, हिरण जब कोई म्यूजिक की आवाज सुनते हैं तो उनके कान एकदम ऐसे होते हैं. या आप सब डिवोटी जब भागवत सुनने बैठते हैं तो एकदम अलर्ट रहते हैं. इट शुड बी लाइक दैट. तो चैतन्य महाप्रभु अपने कानों को और ज्यादा उसके पास में ले आए और ध्यान से सुनने के लिए. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए. ही इनंडेटेड पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी विद लव ऑफ गॉड. उन्होंने जगन्नाथपुरी में प्रेम की बाढ़ पैदा की. अच्छा, ये लीला होने के बाद अब लक्ष्मी देवी अपने अपार्टमेंट में वापस चले गए जगन्नाथ मंदिर में, और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे घंटों करते रहे. दोपहर का समय आया और सब पार्टी थक गए, सब डांस, जितना वो डांस कर रहे हैं तो सब कर रहे हैं, लेकिन सब थक गए और महाप्रभु नहीं थके. तो अंत में नित्यानंद प्रभु प्रार्थना करने लगे. नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि भगवान रुक जाए, अभी दोपहर का समय हो गया. स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान के पास आए, बोले आपका नृत्य बहुत अच्छा है लेकिन सब भक्त बहुत थक गए हैं. तो महाप्रभु को होश आया, फिर एक बगीचे में गए जिसका नाम है आई तोटा गार्डन, ये गुंडीचा मंदिर के पास में. वहां थोड़ी देर विश्राम किया, फिर दोपहर स्नान करने गए, फिर बहुत प्रकार का महाप्रसाद, जो अभी भी जगन्नाथ को भोग लगाया था और लक्ष्मी को भोग लगाया था, दोनों जगह से प्रसाद आया. फिर महाप्रभु ने प्रसाद लिया, फिर शाम के समय फिर गुंडीचा मंदिर गए जगन्नाथ दर्शन के लिए, और फिर नृत्य करने लगे. और फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं नरेंद्र सरोवर जाऊंगा. प्रवचन के शुरुआत में मैंने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, खेलते हैं, कौन सा सरोवर था वो? इंद्रद्युम्न सरोवर. लेकिन यहां जो सेकेंड पार्ट में नरेंद्र सरोवर का वर्णन किया गया, आपको याद है आप लोग जगन्नाथपुरी में देखा हो नरेंद्र सरोवर, एक बहुत सुंदर सरोवर है, बीच में एक लैंड जैसे है, एंड इट्स अ मीटिंग प्लेस. जो भी डिवोटीज पुरी और उड़िया वैष्णव और गौड़िया वैष्णव जाते हैं वहां पर मिलन होता है. शुरुआत से यात्रा वहां से, वहां स्नान करने से शुरुआत होती. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द आचार्यस, ये नरेंद्र सरोवर इज गंगा, नॉन डिफरेंट फ्रॉम गंगा. राजा नरेंद्र थे, उन्होंने वो सरोवर निर्माण कराया. अभी उसका बहुत रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है. पिछली बार मैं जब गया था सोमा प्रभु जी के साथ में गया था, मार्च के महीने में, पूरा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, बहुत अच्छे घाट बन रहे हैं. तो नरेंद्र सरोवर में चैतन्य महाप्रभु लीला करने लगे. इस तरह से ये लीला रोज 8 दिन चलती रही. फिर उल्टा रथ का समय आया. उल्टा रथ यानी भगवान जगन्नाथ वापस जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं 8 दिनों के बाद में. पूर्ववत कैला प्रभु लय भक्तगण परम आनंदे करे न नर्तन कीर्तन. मेरे मन में प्रश्न था, सचिव प्रभु भी मुझे बोल रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सब डिवोटीज रथ यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुशी से डांस करते हैं, उनको खुशी होती है, कृष्ण वृंदावन आ रहे हैं, राधा रानी खुशी होती है. लेकिन जब उल्टा रथ होता है तो भगवान वृंदावन से लौट रहे हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न था, और सजी सुख प्रभु ने पूछा था कि क्या भगवान फिर भी भाग लेते हैं कि नहीं जब उल्टे रथ में. यहां बताया गया चैतन्य प्रभु भाग लेते हैं. यहां लिखा गया पूर्ववत कैला प्रभु लय भक्तगण परम आनंद करे न कीर्तन नर्तन. एज प्रीवियसली चैतन्य महाप्रभु एंड हिज डिवोटीज अगेन चैंटेड ऑन द उल्टा रथ सेरेमनी विद द डिवोटीज, फिर भाग लिए. अभी एक प्रॉब्लम हो गया कि जब रथ लेकर जा रहे थे, एक जो आपको मैंने बताया था पांडु विजय में पहंडी में भगवान जगन्नाथ के कमर में रस्सी बांधी जाती है, और रस्सी से उनको उठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं. लेकिन कुछ रस्सी जो है टूट गई थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भक्तों को बुलाया, एक का नाम था रामानंद और एक का नाम था सत्यराज. ये कुलीना ग्राम के वासी थे, रामानंद बासु और सत्यराज खान. और चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ उनसे कहा कि देखो तुम्हारी ये सेवा है, हर वर्ष रथ यात्रा के लिए तुम रस्सी लेकर आना अपने गांव से. कुलीना ग्राम में रस्सी बनाई जाती थी, और इस रस्सी की पूजा करना. रथ में अभी न केवल जगन्नाथ पूजनीय है, वो रस्सी भी पूजनीय है, झंडे भी पूजनीय है. जय चैतन्य प्रभु जी के घर में मुझे याद है एक बहुत झंडा है, अभी भी है जगन्नाथ का रथ यात्रा के समय का झंडा, मैंने भी छोटा सा पीस लिया था. तो जगन्नाथ के रथ का झंडा, उसके पहिए, उसके हर एक चीज पूजनीय है. यू शुड वर्शिप तदीय एनीथिंग रिलेटेड टू द लॉर्ड. इसलिए महाप्रभु बोले तुम्हें रस्सी को ले जाओ, इसकी पूजा करो, लेकिन अगली बार ऐसी रस्सी लेके आना जो टूटे नहीं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया. तो भक्त बहुत खुशी हो गए ये सेवा को प्राप्त करके. चैतन्य महाप्रभु बोले जस्ट लुक एट दिस सैंपल, मेक द रोप्स दैट आर मच स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग रोप बनाना। फिर उन्होंने बताया ये जो रस्सी है ये अनंत शेष का रूप है, इसलिए इसका आदर करना चाहिए। उसके बाद भगवान से आज्ञा लेने के बाद सत्यराज और रामानंद वासु वापस चले गए। हर वर्ष वो रथ यात्रा के लिए रस्सी लेकर आते। फिर भगवान जगन्नाथ फिर से जगन्नाथ मंदिर में चले गए और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ चले गए। यही मतलब भक्तगण यात्रा देखा इला भक्तगण लय वृंदावन के लिए कैला। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग ले रहे थे और वृंदावन लीला दिखा रहे थे। चैतन्य गोसाई लीला अनंत अपार बोली, चैतन्य गोसाई लीला अनंत अपार। चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसी है? अनंत अपार, अपार यानी लिमिटलेस, कोई सीमा ही नहीं। सहस्त्र वदन जार नहीं पाय पार, सहस्त्र वदन, सहस्त्र वदन कौन है? अनंत शेष। अनंत शेष अगर अपने हजारों मुंह से हजारों साल तक भी गौर लीला का गान करें तो भी अंत नहीं होगा, तो हम कैसे उसका अंत प्राप्त कर सकते हैं? वी कैन नेवर रीच द एंड। मैं अभी यहां से आप सबकी अगर कृपा हो आशीर्वाद हो तो मैं कल जगन्नाथपुरी जा रहा हूं रथ यात्रा के लिए। आप सब वैष्णव मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सही चेतना में जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर सकूं, कल गुंडीचा की सफाई में भाग ले सकूं और परसों रथ यात्रा में भाग ले सकूं, क्योंकि बिना वैष्णव की कृपा के हम धाम को नहीं देख सकते। इवन हम फिजिकली धाम में भी हों, बिना गुरु की कृपा के हम धाम को नहीं देख सकते। तो मैं उस सेक्शन से अंत करना चाहूंगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं संन्यास लेने के बाद। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली उनके मन में इच्छा होती है वृंदावन जाने की, संन्यास लेने के बाद वो वृंदावन जा रहे होते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु धोखा दे देते हैं। नित्यानंद प्रभु छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं अगर चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे वृंदावन का रास्ता तो आप क्या दिखाना उनको? शांतिपुर, शांतिपुर का रास्ता। और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य तैयार बैठे थे उनके स्वागत के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर एक्सटेसी में आए कीर्तन करते हुए और गंगा के किनारे आए। उनको लगा यमुना है, हो यमुना और सूर्य पुत्री तुम कृष्ण को बहुत प्रिय हो, जो तुम्हारे जल में स्नान करता है सो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। फिर देखा अद्वैत आचार्य यहां पर बैठे, थोड़ा सस्पिशियस हो गए। अद्वैत तुम्हें केमने जानी ला आमी वृंदावन, तुम्हारा कसला कर ला मैं वृंदावन मध्य आए। तो अद्वैत आचार्य बोले शांतिपुर में आपका स्वागत है, ये यमुना नहीं है ये गंगा है। ओ नित्यानंद वंशीला, नित्यानंद प्रभु चीटेड मी। तो अद्वैत आचार्य नहीं नहीं धोखा नहीं दिया, एक्चुअली एक्चुअली आप देखो तो गंगा और यमुना दोनों संगम होते हैं प्रयाग में, और जो पश्चिम दिशा में नदी जाती है उसको यमुना बोलते हैं और जो पूर्व दिशा में नदी जाती है उसको गंगा बोलते हैं। आज आपने पश्चिम दिशा में स्नान किया इसलिए यमुना में स्नान किया, मेरे घर में चलो मेरी पत्नी ने बहुत सारा प्रसाद बनाया है। फिर वहां पर वो घर में जाते हैं, नित्यानंद प्रभु भी आ जाते हैं तब तक बहुत सारा प्रसाद बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे थोड़ा सा प्रसाद दो, मैं ज्यादा नहीं खा सकता मैं सन्यासी। अद्वैत बोले कि आप जगन्नाथपुरी में कितना खाते हमें सब मालूम है, 56 भोग खाते हो, और कृष्ण लीला में द्वारका में आपके 16,108 पत्नी है सबके साथ आप रोज खाते हो, ऐसे नहीं कि एक बार एक दिन, सबके साथ रोज खाते हो, और वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ खाते हो और सब बड़े गोपियों के घर में भी खाते हो, तो जितना आप रोज खाते हो उसकी तुलना में जो मैंने दिया वो एक मुट्ठी है, चुपके से खाओ चतुराई छोड़ दो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ओ ये 3 दिन से फास्टिंग व्रत, आज लगा था कि कुछ व्रत तोड़ने का समय मिलेगा प्रसाद मिलेगा, लेकिन इतना थोड़ा प्रसाद आज भी उपवासी रहना पड़ेगा। अद्वैत आचार्य बोलते हैं तुम एक सन्यासी हो तुमको जो मिल जाए चुपके से स्वीकार करो और लोभ छोड़ दो। नित्यानंद प्रभु बोले देखो तुमने मुझे बुलाया है तुम्हारा कर्तव्य मुझे पूर्ण संतुष्ट करना। अद्वैत आचार्य बोले क्या ये स्वीकार करो। इस तरह दोनों में बहुत सारा मजाक कर रहा था, अंत में नित्यानंद प्रभु बोले ये प्रसाद बेकार है, उसको फेंक दिया जमीन पर, और जैसे उसके कुछ दाने नित्यानंद प्रभु ने फेंक दिया तो उसके कुछ दाने अद्वैत आचार्य को स्पर्श हुए और अद्वैत एक्सेसी में आकर गाने लगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतने एक्सेसिव में आ गए और अद्वैत आचार्य बोले मैं अपवित्र हो गया। ये एक झूठा किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी जाति का भी पता नहीं, ऐसे व्यक्ति का झूठा मुझे स्पर्श हुआ। नित्यानंद प्रभु बोले देखो ये प्रसाद आपने ही कृष्ण को भोग लगाया था, ये भगवान का महाप्रसाद को आप झूठा बोल रहे हो, तुमने अपराध किया है। अब तुमको 100 सन्यासी को बुला के प्रायश्चित करना होगा। अद्वैत बोले आपको बुलाने के बाद अब किसी को नहीं बुलाऊंगा। तो दोनों ऐसे बहुत देर तक मजाक कर रहे थे। अद्वैत और नित्यानंद के बहुत सारे लीलाएं हैं जिसमें चैतन्य चरितामृत बताई गई। अंत में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए उनकी माता आई शची देवी, महाप्रभु उनके चरणों में गिर पड़े, बोले माँ मैंने गलती से संन्यास ले लिया अनजाने में, सब प्लान किया था लेकिन अनजाने में, अब आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा, आप बोलो तो मैं वापस नवद्वीप आ जाऊं, मेरा मन है वृंदावन जाने के लिए लेकिन आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। शची माता बोले कि आप अगर वृंदावन चले जाओगे तो मुझे कोई समाचार ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय कोई ईमेल सिस्टम नहीं था, नहीं कोई एड्रेस नहीं था mahaprabhu@vrindavan.com की ईमेल भेज सके। और जब एक ही तरीका था समझ, इवन पोस्ट कार्ड भी नहीं था उस समय, कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, किसी का स्वास्थ्य कैसा है, कोई आता और जाता तो ही होता था, बस एक ही तरीका था। महाप्रभु की एक और नई किताब आई है, अगर जो भक्त पढ़ना चाहें, उसका नाम है भक्ति रत्नाकर। जो भी राधानाथ महाराज लेक्चर्स में बताते हैं, जो गौरलीला के स्टोरीज हैं, वो भक्ति रत्नाकर से, जो चैतन्य चरितामृत में नहीं दिया भक्ति रत्नाकर में दिया। जैसे श्रीनिवास आचार्य का लाइफ आपको याद है, पिछले पुणे यात्रा में श्रीनिवास का लाइफ 4-5 घंटे दिया था, फिर नरोत्तम का लाइफ। तो भक्ति रत्नाकर में ये सब चीजों का वर्णन जो है बहुत डिटेल में दिया गया है, जो महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो कैसे रहते थे डे टू डे, मतलब कैसे उनका व्यवहार होता था। और ऐसे महाप्रभु बैठे हैं, बहुत दिन से मुझे समाचार नहीं मिला कि रूप और सनातन के बारे में, उतने में एक मैसेंजर है, मैं अभी अभी आया हूं वृंदावन से, और रूप और सनातन वहां पर बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। इस तरह से इट्स लाइक ऐसा लगता है कि हम वहां पर हैं अभी, इट इज सो लाइवली। यू हैव दैट बुक भक्ति रत्नाकर, आपके इसमें है फोलियो में, फोलियो में कुछ भाग है उसके कंप्यूटर में, आप उसको पढ़ना जब भी समय मिले, रीड दिस बुक्स, वेरी ब्यूटीफुल बुक। मैं इसका थोड़ा भाग पढ़ा अभी। और जो भी आप यात्रा में लेक्चर सुनते हैं ब्रजमंडल के बारे में, वो भक्ति रत्नाकर से ही है। भक्ति रत्नाकर का 5th जो चैप्टर है वो कहानी ऐसी कि राघव पंडित श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम को परिक्रमा पे ले जाते हैं वृंदावन में, और उस परिक्रमा में उनको सारे स्थानों का बताते हैं, यहाँ पर ये खादीर वन है, यहाँ पर कृष्ण ने किसको मारा था, बकासुर को मारा था, जो बतक के रूप में आया था बकासुर। यहाँ पर कृष्ण ने यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया, यहाँ पर कृष्ण ने बलराम जी ने तालवन में धेनकासुर को मारा था। तो ये सब एकदम लाइवली डिस्क्रिप्शन है। तो शची माता बोले कि आप वृंदावन मत जाओ लेकिन आप जगन्नाथपुरी जा सकते हो, क्योंकि जो कृष्ण वृंदावन में वही जगन्नाथपुरी में, जय कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ। अब जगन्नाथपुरी में हर वर्ष 200 भक्त आते हैं और जाते हैं, तो मुझे रेगुलर समाचार मिल सकता है कि आपका स्वास्थ्य कैसे है, क्योंकि हर माता को चिंता होती है अपने पुत्र की। तो इसलिए महाप्रभु ने निश्चय किया कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, लेकिन भक्तों ने कहा आप जा सकते हैं लेकिन 10 दिन यहाँ पे रुक जाओ। तो शांतिपुर में 10 दिन एक बड़ा फेस्टिवल मनाया गया, और शची माता ने सब भक्तों से निवेदन किया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करती हूं, आप सब तो महाप्रभु की मिलते रहोगे बाद में भी, लेकिन महाप्रभु घर में कभी नहीं आएंगे, इसलिए जितने दिन चैतन्य महाप्रभु यहां पर है मैं अपने हाथों से प्रसाद बनाकर उनको खिलाना चाहती हूं। और सारे भक्तों ने निवेदन स्वीकार किया, शची देवी अपने हाथों से प्रसाद बनाते गौरंग महाप्रभु के लिए। और कुछ दिन बीत गए और फिर महाप्रभु बोले अब मैं जगन्नाथ पुरी जाऊंगा, कृपया दुखी मत होना, मैं जा रहा हूं, मैं जगन्नाथ नीलाचल चंद्र को देखूंगा और शीघ्र ही लौट कर आऊंगा, कृपया आप अपने अपने सब घर में जाओ और कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कथा में ऐसे कि अभी घर में जाओ कीर्तन करो। उसके बाद भक्तों ने कहा भगवान आप तो जा सकते हो, लेकिन भक्तों में जब कोई रिक्वेस्ट करना होता है ना तो ऐसे करते हैं, आप जा सकते हो लेकिन, सो दैट पर्सन डज नॉट फील बैड ऑल्सो। जैसे गोविंद प्रभु भी महाराज से इतना प्रेम करते हैं, जब कोई कुछ बोलना होता है जो महाराज नहीं चाहते तो ऐसे बोलते हैं आप कर सकते हो लेकिन, महाराज के हेल्थ के लिए उनको इतना कंसर्न होता है और महाराज उनको प्रेम से उनके वश में रहते हैं। तैसे ही भगवान को निवेदन करते हैं, आप जा सकते हो लेकिन यह समय अच्छा नहीं है, अभी अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि उड़ीसा और बंगाल में विरोधी राज्य है। बंगाल में मुसलमानों का राज्य है, उड़ीसा में हिंदुओं का राज्य है, और अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है उसको मृत्यु दंड हो सकता है, बहुत सारे बाधाएं हैं। महाप्रभु बहुत गंभीर हो गए, बोले वो समय कब आएगा जब कोई बाधा नहीं होंगे, मैं अभी जाऊंगा, सबको निश्चय बता दो मेरा, मैं जा रहा हूं। और अद्वैत आचार्य तुरंत आए, हाथ जोड़ के बोले आपके लिए क्या बाधाएं हैं, सब बाधाएं आपके ही सेवक हैं। अभी इस वाक्य के ऊपर एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ने प्रवचन दिया था, ऑल ऑब्स्टेकल्स आर योर सर्वेंट्स। तो महाराज बता रहे थे जो भी भक्ति के जीवन में जितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो एक्चुअली भगवान के द्वारा भेजे गए हैं और भक्त को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हमें लगता है कि अगर मेरी कोई बाधा नहीं होती, मेरे परिवार में कोई समस्या नहीं होती, मेरा स्वास्थ्य सब अच्छा होता तो मैं स्मूथली भगवत धाम जा सकता, लेकिन अगर ऐसा होता तो भगवान वही करते, क्योंकि भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट है थोड़े से हमारे तुलना में, यू नो ही नोज व्हाट इज बेस्ट, इफ ही सेंडिंग ऑब्स्टेकल्स दैट इज मर्सी ऑल्स। तो महाराज का बहुत डिटेल लेक्चर है उसके ऊपर, हाउ ऑब्स्टेकल्स आर एक्चुअली द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इन हेल्पिंग वन क्लोजर टू कमिंग क्लोजर टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। अद्वैत आचार्य बोले सारे बाधाएं आपके सेवक हैं, आप जगन्नाथपुरी जाओ। एंड महाप्रभु स्टार्टेड वॉकिंग लाइक अ फेरोशियस लायन, एक कोई जैसे शेर चलता है वैसे महाप्रभु चलने लगे और भक्त उनके पीछे पीछे जा रहे थे सब। नेचुरल आकर्षण, महाप्रभु तो कृष्ण है। और कुछ दूर जाने के बाद महाप्रभु पीछे मुड़े, हाथ जोड़ के बोले आप सब घर अपने अपने घर जाओ, कृष्ण नाम लो, मैं कुछ दिनों में मिलूंगा आपको। सारे भक्त लौट गए। वृंदावन दास ठाकुर कंपेयर करते हैं, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए जो पीड़ा गोपियों को हुई वही पीड़ा नवदीप वासियों को हुई जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर छोड़कर जगन्नाथपुरी निकल पड़े। श्री प्रभुपाद वृंदावन दास ठाकुर का सेंटेंस है, प्लीज लिसन केयरफुली। लाइफ एंड डेथ डिपेंड ऑन कृष्णाज विल, इट डज नॉट मैटर वेदर वन ड्रिंक्स पॉइजन और नेक्टर। मृत्यु और जीवन कृष्ण की इच्छा पर है, चाहे अमृत पियो या जहर पियो। अर्थात हो सकता है कि आप अमृत पी के मर जाओ अगर कृष्ण चाहे, अब आप में जहर पीने से जिंदे हो जाओ, हरे कृष्ण। कृष्ण पे सब कुछ है, सब कुछ कृष्ण से, और कृष्ण ने ऑलरेडी डिसाइड किया, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज डिसाइडेड बाय कृष्ण। तो महाप्रभु बता रहे हैं डिवोटी शुड बी फियरलेस। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें एक एक सेंटेंस को अपने हृदय में लिख सकते हैं। नो वन हैज द पावर टू चेंज द फेट ऑफ समवन, कृष्णा प्रोटेक्ट्स और समवन कृष्णा किल्स। कृष्णा जो करते हैं उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन चार डिवोटीज बोले मैं भी साथ में जाना चाहता हूं। कौन कौन थे वो चार डिवोटीज? महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी गए जगदानंद और नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, एक्चुअली चार नहीं यहां पे छह बताए, कोई दूसरे बुक्स में चार बताए, नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, गोविंद, जगदानंद, ब्रह्मानंद। कौन कौन से नाम है दया सर प्रभु? जगदानंद, नित्यानंद, दोनों जगदानंद, ब्रह्मानंद, मुकुंद, गदाधर, गोविंद, ये छह डिवोटीज। थोड़ी दूर जाने के बाद महाप्रभु ने पूछा उनसे कि आपने कुछ रास्ते के लिए कुछ प्रसाद लिया है, आपने कुछ पैसे लिए हैं, प्लीज टेल द ट्रूथ, सत्य बोलो। सब बोले भगवान आपकी अनुमति के बिना हम क्या ले सकते, आपकी परमिशन के बिना कैसे ले सकते। भगवान मुस्कुरा कर बोले आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव नॉट ब्रॉट एनीथिंग, आप कुछ नहीं लाए इसलिए बहुत अच्छा है, अगर आप कुछ लेकर आते तो मैं आपको यहीं से वापस भेज देता। डेस्टिनी विल प्रोवाइड द फूड रिटर्न फॉर दैट डे, इवन इफ वन इज इन द फॉरेस्ट इट इज इनएविटेबल दैट ही विल मीट हिज डिस्टाइंड फूड। यानी जो उसके कर्मों में लिखा है वो भोजन अपने आप आ जाएगा, अगर आप जंगल में भी हो तो आपको टिफिन वहीं पर आ जाएगा। आप बोलो ये कैसे हो जाता है, समाउ अदर कृष्ण अरेंजेस। ऑफकोर्स क्योंकि हम उतने एडवांस नहीं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम कुकिंग अरेंजमेंट्स करें, हम माधवेंद्रपुरी की नकल नहीं कर सकते। तो, माधवेंद्रपुरी ऐसे थे वो अयाचक वृत्ति का पालन करते, वो लेट जाते थे आराम करते, और कोई आता तो पी लेते प्रसाद, दूध पी लेते या प्रसाद खा लेते, नहीं आते तो हर एक एक्स्ट्रा जप कर लेते। मैंने एक बार ट्राई किया था, ये बहुत शुरू था 1989 में जब मैं फर्स्ट ज्वाइन किया था, मैं बहुत फैनेटिक था, अभी भी थोड़ा लेकिन पहले ज्यादा था। आप सोच सकते पहले कितना था। तो मैं थी राधा गोपीनाथ मंदिर में, जो डीटी के बाजू में जो कमरा है वो मेरा ऑफिस था, गौरनिताई के बाजू में ऊपर जो ऊपर फ्लोर था, कोई याद है वृंदावन को याद होगा शायद, ऊपर एक ऑफिस था, तो वहीं पर लेटा था ऑलमोस्ट 36 आवर्स तक। फिर इतनी भूख लगी नीचे गया, कुछ नहीं था, डीटी रूम से खीर निकला था ऑफरिंग, तो खीर पी लिया डायरेक्ट। वी कैन नॉट इमिटेट यू नो, बट वी शुड ट्राई टू डू लिटिल तपस्या एटलीस्ट, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स का भी ऐसे बोलना है, अभी गोपी जन वल्लभ प्रभु मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर्स भी ऐसा बताते हैं कि थोड़ा कम खाना और एक ही प्रकार का भोजन लेना वो हेल्थ के लिए अच्छा है। इन्हें सोचे राइस, दाल, फ्राइड राइस, टैमरिंड राइस, पुलाव, स्वीट राइस और रोटी और पूरन पोली और तीन सब्जी, तो पेट में सब गड़बड़ हो जाता है। या रियली अभी ये सब स्पेशली आप 30 उम्र क्रॉस करते हो तो उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, 20-25 में आप जो भी खाओ कोई बात नहीं, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है एंड वी शुड ईट वेरी लेस, जितना आप कम खाओगे उतना डाइजेशन भी अच्छा होगा और हेल्थ के लिए भी अच्छे और खर्चा भी कम होगा। हमारे जैसे कल प्रोग्राम में इतने डिवोटीज आ गए थे, प्रसाद खत्म हो गया था। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा, डिवोटी शुड ट्राई टू कुक एक्स्ट्रा ऑल्सो, बट स्टिल वी शुड ऑलवेज थिंक लेट मी ईट लेस। जैसे बंगाली में कहावत है खाइब कि न खाइब, अगर आपको लग रहा है कि डाउट है कि अभी खाऊं कि नहीं खाऊं, भूख है कि नहीं खाऊं, और जाइब कि नहीं जाइब, जाइब यानी टॉयलेट जाना है कि नहीं जाना है तो चले जाना चाहिए। वी शुड नॉट कंट्रोल द अर्ज फॉर गोइंग टू टॉयलेट। एनीवे ये चैतन्य भागवत से नहीं है, सॉरी ये थोड़ा बोल लिया। एक्चुअली क्लास पूरा हो गया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा परपोर्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु से डेस्टिनी विल प्रोवाइड, इवन इफ यू आर इन द फॉरेस्ट, आप जंगल में भी हो गए तो आपको जो प्रसाद मिलना है मिल जाएगा। और वो उदाहरण देते हैं एक राजकुमार का, एक राजकुमार था, उसने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया था, बहुत अच्छा अपने उसके सर्वेंट से प्रसाद बनाया था। अचानक उसका पत्नी से झगड़ा हो गया, वो बोला आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आई विल नॉट ईट, और उनके सर्वेंट्स को सब मलाई कोफ्ता सब सब्जियां सब मिल गई। तो जिसके कर्मों में लिखा होता है वो चीज उस समय आ जाती है, एवरीथिंग। इवन जो जैसे अभी मैं बैठे जब कर रहा था तो एक बैल्कनी में यहाँ पे बीटे तो एक पक्षी आया एकदम पास में आया और एक दाना पड़ा था चावल का वो लेके गया। तो मैं सोच रहा था उस पक्षी को पहले पता नहीं था कि यहाँ दाना है, और उसको हमें पता नहीं था कि पक्षी आने वाला है, लेकिन भगवान ने अरेंज की। ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्णा, कहते ना महाप्रभु बोले। अब थोड़े आगे चले और एक गांव में पहुंचे जिसका नाम है अतिसार। अतिसार वहां पर एक डिवोटी रहते थे जिसका नाम है श्री अनंत। श्री अनंत इतने खुश हो गए कि भगवान मेरे घर में आए, उन्होंने भगवान को बहुत अच्छा प्रसाद अर्पण किया। भगवान के पार्षद बहुत अच्छी तरीके से प्रसाद खा रहे थे, लेकिन भगवान को इतना विरह लग रहा था, जगन्नाथ नीलाचल चंद्र जय जगन्नाथ, कब मैं जगन्नाथ को देखूंगा, कि वो सिर्फ नाम से खाते थोड़ा बहुत। फिर वो आगे निकले और पुकारने लगे हरी हरी। ही केम टू अ घाट कॉल्ड छत्रभोग। आपने सुनी है ये कहानी छत्रभोग की? छत्रभोग ये सब स्थान मायापुर से पुरी के बीच में है। एक बार हमारे वृंदावन के बस पार्टी के डिवोटिस जगन्नाथपुरी से मायापुर गए थे, तो हम ये सब स्थान रुकते रुकते गए। कभी आपको भी अगर फ्री टाइम मिले या कभी आप जाते हैं छोटे ग्रुप में तो ये सब स्थान देख सकते हैं, अभी भी वो जगह है, मंदिर है वहां पर। तो वही जगह पे पहुंचे छत्रभोग, यहां पर गंगा के 100 शाखा हो जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माउंट्स, और वहां पर एक घाट है जिसका नाम है अंबुलिंग घाट। आपको मालूम है इसका नाम अंबुलिंग घाट क्यों है? अंबु यानी क्या, व्हाट इज अंबु? आनंदम अंबुदी वर्णनम, अंबु यानी पानी, अंबुलिंग वॉटर लिंग, यहां पे शिवलिंग है पानी का बना है। अभी पिछले 2 महीने पहले मैं तिरुपति गया था, तिरुपति में एक शिवलिंग है कालहस्ती, आपने जगह सुना है नाम कालहस्ती तिरुपति के पास, तो कालहस्ती में जो शिवलिंग है वो वायु का बना हुआ है। और कैसे पता चला, जब फ्लेम जलाते हैं तो वो हवा का पता चलता है कि वहां पे हवा है, क्योंकि जहां पे हवा होती है वहां पे वो फ्लेम्स दिखाई पड़ते हैं। जैसे शिवलिंग भी अर्थ से बनते हैं, पृथ्वी से, मिट्टी का तो शिवलिंग सब जगह दिखाई पड़ता है, जल का भी, अग्नि का भी, वायु का भी, आकाश का भी। यहां पे शिवजी पानी के रूप में क्यों आ गए? क्योंकि शिवजी को बहुत इच्छा थी गंगा का संग करने की। गंगा पहले शिवजी की जटाओं से थी, जब गंगा धरती पे आ गई तो शिवजी को बहुत उत्सुकता थी मैं गंगा का संग करूं, तो शिवजी जल के रूप में आ गए। गंगा माता को बहुत प्रसन्नता हुई अपने स्वामी शंकर जी का संग करने में, और शंकर जी को बहुत खुशी हुई गंगा में स्नान करने की, क्योंकि गंगा चरणामृत। तो इस घाट का नाम हो गया अंबुलिंग घाट, और चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर स्नान किया और जोर से कि रोड लाइक अ लायन, हरी हरी, और फिर महाप्रभु के आंखों से इतने आंसू आ रहे थे, इतने आंसू आ रहे थे। और फिर महाप्रभु कुछ दिनों बाद आगे निकले, एक गांव में पहुंचे। यहां पे एक गवर्नर था, इसका नाम था, अब गेस करिए, गवर्नर बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसका नाम बहुत खराब था। कौन है हरिदास ठाकुर की लीला में खराब व्यक्ति था? रामचंद्र खान। आपने सुनी है ये कहानी? ये भी रामचंद्र खान था, लेकिन अच्छा रामचंद्र खान था। वो उस एरिया का गवर्नर था, यानी लीडर या जो भी आप बोले। जब वो पालकी में आ रहा था, महाप्रभु को देखकर पालकी से छलांग लगा के दंडवत प्रणाम किया, महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। और महाप्रभु ने देखा उनको, तो महाप्रभु को होश नहीं था। जगन्नाथ, उनके आंखों से गंगा यमुना पानी बह रहा था। उसने प्रणाम किया, तब महाप्रभु ने उसे पूछा, तुम कौन हो? वो गवर्नर इतना नम्र था, उसने ही नहीं बोला मैं गवर्नर हूं यहां का। वो बोले मैं आपके दासों का दास हूं। अब बाकी लोगों ने बताया कि ये इस इलाके के गवर्नर है। महाप्रभु बोले आप यहां के गवर्नर हो, बताओ यहां से पूरी जाने का सबसे तेज रास्ता कहां पर है? आई वॉन्ट टू क्विकली गो टू पूरी। जय जगन्नाथ, नीलाचल चंद्र, ऐसा बोलते हुए वो जमीन पर बेहोश हो गए। फिर रामचंद्र खान ने उनको उठाया और बोले, भगवान आपकी जो इच्छा वो हम करेंगे, लेकिन अभी अच्छा समय नहीं है। ये उड़ीसा का बॉर्डर है, अब आप बंगाल से उड़ीसा जा रहे हैं, तो दोनों शत्रुओं में झगड़ा चल रहा है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको जासूस समझा जाता है और उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। यही नहीं, जमीन के अंदर उन्होंने त्रिशूल गाड़ के रखे और चलता व्यक्ति घायल हो सकता है, इसलिए थोड़े दिन रुक जाइए और आप उतनी देर में मेरे घर में प्रसाद के लिए आइए। तो महाप्रभु ने उनके घर में प्रसाद स्वीकार किया। एक्चुअली महाप्रभु प्रसाद खा रहे थे सिर्फ नाम के लिए, लेकिन बाकी भक्तों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रसाद स्वीकार किया। महाप्रभु जब चल रहे थे, उनको पता नहीं चलता, मैं घटना बता देता हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है। हम लोग एक बार जानामा माता जी के घर में गए थे। आप जानते हैं पूना में एक बहुत सीनियर डिवोटी है, जिनसे पूना में सारा प्रीचिंग वहीं से शुरू हुआ था। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज उनके घर में, पहले जब वो पूना में रहते थे तो बहुत बार जब भी आते उनके घर में ठहरते, तो गोविंद प्रभु और मैं भी महाराज के साथ थे उस समय। तो आप जानते हैं माता जी इसकी बहुत इच्छा होती है कि गुरु महाराज बहुत कुछ खाएं, और बड़े बड़े तीन चार प्लेट्स बनाए थे। तो भागवतम क्लास 10 बजे खत्म हुआ, उसके बाद महाराज के बहुत सारे प्लेट्स थे उसमें, तो उसमें इडली, डोसा और पूरी और बहुत सारी चीजें थी। बोलने से संतुष्टि हो जाए। तो महाप्रभु ने, महाराज ने दरवाजा बंद किया और गोविंद, और थोड़ा सा उन्होंने लिया पहले, और गोविंद प्रभु मेरे को बोला आप पूरा खत्म कर दो। तो हमने पूरा ले लिया और बाहर जब लेके आए तो माता जी बहुत खुश थे कि महाराज ने ले लिया। समटाइम्स सन्यासीज हैव टू डू दिस थिंग्स, प्लीज। तो चैतन्य महाप्रभु खुद नहीं लेते खुद, लेकिन दूसरे भक्तों को बहुत देते प्रसाद। और फिर महाप्रभु चल रहे थे, कभी कभी उनको पता नहीं होता है कि दिन है कि रात है, मैं जमीन पे चल रहा हूं कि मैं पानी पे तैर रहा हूं, नदी पार कर रहा हूं। अंत में रामचंद्र खान ने सब बोट्स अरेंज किए, बोट में बैठे नदी पार करने। मुकुंद कीर्तन गाओ, मुकुंद दत्त गाने लगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, उनके आंखों से आंसू आने, उनके शरीर कांपने लगा, वो जोर से गरजने लगे, हरी हरी। तब जो बोटमैन था वो घबरा गया, वो बोला कीर्तन बंद करो, यहां पर टाइगर बाघ बोलते ना, बाघ है और क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, कई चोर है, वो सारी संपत्ति चुरा लेंगे, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, हम उड़ीसा पहुंचने तक रुक जाओ। मुकुंद दत्त ने कीर्तन बंद किया, फिर महाप्रभु खड़े हुए पूछे, मुकुंदा तुम क्यों घबरा रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि जहां पर भक्त चल रहे हैं उसके आगे सुदर्शन चक्र चल रहे हैं, जहां पर डिवोटीज कीर्तन कर रहे होते हैं सामने चक्र चल रहा होता है, वो हमेशा भक्तों की रक्षा करता है, तुम फिर से कीर्तन शुरू करो। और डिवोटीज ने फिर से कीर्तन शुरू किया। अंत में वे घाट में पहुंचे जिसका नाम था प्रयाग घाट। प्रयाग मतलब संगम होते हैं, जैसे यहां भी एक प्रयाग है, कोल्हापुर में भी एक प्रयाग है, मुझे कल कोई ड्यूटी बता रहे, आप बताओ कौन से नदी है वो? पंचगंगा। आप वहां जाओगे बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में वहां पे पांच प्रयाग है, देव प्रयाग, आप इसमें गए बद्रीनाथ, रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग, से पांच प्रयाग, यानी गंगा के अलग अलग शाखाएं हैं जहां पे मिलते हैं। जैसे गंगा की एक शाखा गंगोत्री से आ रही है, यमुनोत्री से, दोनों मिल गए तो वो उसका फिर बाद में नाम कॉमन हो जाता है, उसके पहले दो नाम होते हैं फिर एक बन जाता है फिर दो, इस तरह से। तो महाप्रभु यहां पर गए, ये भी प्रयाग है। और महाप्रभु के बारे में बताया गया, एनीबडी हु हियर्स द स्टोरी ऑफ हाउ लॉर्ड चैतन्य एंटर्ड उड़ीसा विल फ्लोट इन द नेक्टर ऑफ लव फॉर कृष्ण। जो भी कथा सुनता है कि महाप्रभु कैसे उड़ीसा में प्रवेश किए, वो कृष्ण प्रेम के सागर में तैरेगा। एक बार मैंने महाराज से पूछा था कि हम कहानी में सुनते हैं कि ये सुनने से ये फल मिलेगा, हम सुन लेते हैं फिर बाहर जाके भूल जाते हैं, तो महाराज बोले कि यू हैव टू हियर रिपीटेडली, बार बार सुनना चाहिए, बार 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 बार, देन यू गेट द रिजल्ट। फिर महाप्रभु एक जगह पे गए जिसका नाम है जाजपुर। अब ये स्थान पे आप कभी नहीं गए होंगे, मैं भी नहीं गया, मैं एक बार गया जाजपुर। यहाँ पर वराहदेव का एक प्राचीन मंदिर है और वो स्थान में बहुत से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि महाप्रभु के एंसेस्ट्रल होम था, जैसे होता है ना कि मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी वहां से थे। महाप्रभु सब भक्तों को बोला आप यहीं पे रहो, और स्वयं भिक्षा मांगने गए। जो लक्ष्मी के स्वामी हैं वो घर घर में अपने संन्यास वस्त्र को आगे कर कर चावल भिक्षा मांग रहे थे, और वो लौट कर आए और उन्होंने भिक्षा जगदानंद पंडित को दिया। जगदानंद पंडित ने बहुत अच्छी तरीके से प्रसाद बनाया, सारे भक्तों ने ग्रहण किया। फिर महाप्रभु जगह पे पहुंचे यहां पर टोल टैक्स भरना था। जैसे आप ये हाईवे पे आते हैं तो कोल्हापुर में बहुत सारे टोल टैक्स है। तो उस समय टोल टैक्स ऐसा था कि व्हीकल्स नहीं, हर व्यक्ति का टैक्स भरना पड़ता था, जो भी ये ब्रिज पार करेगा उसको टैक्स भरने। तो महाप्रभु को देखकर वो टोल टैक्स शायद बहुत ही कोई मुसलमान या बहुत ही कोई गंदा व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति था, बहुत वो बोला कि मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा, भगवान को भी नहीं जाने दूंगा, आप टैक्स भरो। लेकिन अचानक जब उसने भगवान को पास से देखा कि सुंदरता को देखकर हृदय परिवर्तित हो गया, उसने पूछा कि आप तो जा सकते हो लेकिन आपके साथ भी कोई है क्या? भगवान मुस्कुरा कर बोले, इस दुनिया में मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। और ऐसा बोलते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तब टोल कलेक्टर बोला, ठीक है आप जा सकते हो लेकिन इन सबको टैक्स भरना होगा, और आगे चले गए। और महाप्रभु ने पहले उनसे बोला था कुछ पैसे साथ में मत लेना, और अभी टैक्स भरना। सब डिवोटीज पहले तो बहुत निराश हो गए। नित्यानंद प्रभु बोले, घबराओ मत, ये कुछ पास टाइम चल रहा है, थोड़ा वेट करो अभी पता चले। महाप्रभु थोड़ी दूर पे एक रॉक पड़ा था, एक शिला, रॉक पे बैठ गए और जब कर रहे थे। तब वो टोल कलेक्टर देखने लगा, उनके आंखों से ऐसे आंसू आ रहे, ऐसे आंसू आ रहे। उसने सबसे पूछा, वो चार नित्यानंद जगदानंद गोविंद ब्रह्मानंद से पूछा, आप बताइए आप कौन हो, क्या आप इसको जानते हो, ये सन्यासी कौन है? सब बोले, ये हमारे स्वामी हैं, इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य।
श्री कृष्ण चैतन्य,
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरिदास ठाकुर ने ये नाम कब लिया था? श्री छोड़ते समय। कभी कभी भक्ति तीर्थ महाराज के मेरे पास कुछ सेमिनार्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कैसे डेथ के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उसमें वो हरिदास ठाकुर का भी बताते हैं कि उनकी जैसे हरिदास ठाकुर ने प्लान किया था कैसे शरीर छोड़ना है। वैसे हम भी ऑफकोर्स अल्टीमेटली भगवान के हाथ में, लेकिन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अभी मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ भगवान के चरणों का, चैतन्य महाप्रभु का, मुख से चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहा हूँ. ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम एक्चुअली. हाँ, उसमें ही बताते हैं डाई बिफोर इट, वही लेक्चर का भी टाइटल वही है. और एक्चुअली क्या हुआ, जब वो लेक्चर दे रहे थे उनको पता नहीं था, मायापुर में लेक्चर दे रहे थे, और एक साल बाद ही उनको कैंसर हो गया, और दो साल बाद वो भगवान के धाम वापस चले गए. बहुत सुंदर लेक्चर है, बहुत इंस्ट्रक्टिव है. तो टोल कलेक्टर ने जब देखा तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है. सबने बताया इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, ये हम सब उनके दास हैं. तो टोल कलेक्टर दौड़ते हुए गया भगवान के चरणों में, बोला सफल हो लो मोरा जन्म कुल, मेरा जन्म मेरा कुल सफल हो गया. पता नहीं मैंने हजारों लाखों जन्म कोई सुकृति किए होंगे जिसे आपके चरणों के दर्शन हो गए. हे करुणा के सिंधु मेरे को क्षमा कर दो. आप जगन्नाथपुरी जाओ और आपके साथी भी जा सकते हैं बिना टैक्स भरे. और सब गए और सब गाने लगे हरी हरी. अभी नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन द डीमंस मेल्ट व्हेन दे हियर द नेम ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड हिज क्वालिटीज. असुर भी पिघल जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने से. और फिर ओनली द सिनर्स विल नॉट ऑनर हिम, बहुत जो पापी हो वही उनका आदर नहीं कर पाएगा. इस तरह महाप्रभु और आगे गए और फिर वे एक जगह पर उन्होंने, अभी ये कहानी चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में डिफरेंट वे में दी है, लेकिन मैं चैतन्य भागवत को फॉलो कर रहा हूं. महाप्रभु ने अपना दंड नित्यानंद प्रभु को दिया कि आप ये दंड पकड़ो, और वो स्नान करने गए एक नदी में जिसका नाम है भार्गी नदी. जब नदी में स्नान किया नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है जो मेरे हृदय के स्वामी हैं, जिनको मैं हृदय में धारण करता हूं, वो दंड को धारण करें ये ठीक नहीं है. उन्होंने दंड के तीन भाग किए और नदी में फेंक दिया. वो नदी का नाम हो गया दंड भंग नदी. और महाप्रभु लौट कर आए, स्नान करके पूछा नित्यानंद वेयर इज माई दंड. नित्यानंद प्रभु बोले आप एक्सटेसी में थे, आप मेरे ऊपर गिरे, मैं दंडे के ऊपर गिरा और पता नहीं क्या हुआ. महाप्रभु बहुत गंभीर हो गए, बोले मेरा एक ही पोजेशन था, साधु के लिए सिर्फ एक ही चीज है दंड, तुमने वो ही तोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, या तुम आगे जाओ या मैं आगे जाऊंगा. नित्यानंद प्रभु सोचे बोले कि आप आगे जाइए, हमारी गलती है. अभी कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन भक्ति चरण ठाकुर इसका इतना बहुत गहरा पर्पस बताते हैं. वो लिखते हैं कि जिसको गौर नेताई में पूरी श्रद्धा है वही इस लीला के पर्पस को समझ सकते हैं. और उसमें बताते हैं बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन एक कारण बताते हैं कि सन्यास के चार स्टेज होते हैं, कुटीचक बहुदक परिव्रजक आचार्य और परमहंस. कुटीचक मतलब सन्यासी अभी घर छोड़ दिया है लेकिन अपने ही घर से दूर थोड़ी कुटिया बनाई है और घर से ही प्रसाद प्राप्त होता है उसको, तो कुटीचक. बहुदक यानी अलग अलग घरों से जाके भिक्षा मांगना उसी गांव में. अब परिव्राजक आचार्य यानी एक गांव से दूसरे शहर से भ्रमण करना और वहां प्रसाद ग्रहण करना. और परमहंस यानी एक ही स्थान पर रहकर अपने मन को गोपीनाथ के चरणों में पूर्ण रूप से केंद्रित करना. तो जो परमहंस अवस्था में है उसको दंडा उठाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने दंडे को तोड़ दिया. और एक और कारण है, क्योंकि वैष्णव जो दंड लेते हैं वो त्रिदंड होता है, और यहां पर एक दंड था, मायावादी एक दंड था, इसलिए उन्होंने एक दंड के तीन भाग कर दिए, इसको त्रिदंड बना दिया. तो ये दंड भंग नदी की लीला है. लेकिन चैतन्य भागवत के अनुसार इसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक शाक्त के पास गए. जो एक शाक्त समझते हैं, शाक्त जो है वो तांत्रिक होते हैं, जो काली के उपासक होते हैं, शाक्त सन्यासी. वो बोला आप मेरे घर में आइए. महाप्रभु उनके पास गए, बोले कई दिनों से मैं आपसे मिला नहीं. और महाप्रभु उसको पता नहीं था, वो शाक्त अपने बारे में बताने लगा आप मेरे घर में आओ मैं आपको आनंद दूंगा. आनंद आपको याद है, वो नित्यानंद और गौरंग एक शांतिपुर में गांव में गए थे, और आनंद अभी चैतन्य आपको एक्सपीरियंस हो गया था आनंद का, इसलिए महाप्रभु दौड़ते हुए गए हरे कृष्ण और वहां से भाग गए. फिर महाप्रभु रेमुना में आए. अभी में आप अपने आप से पढ़ना जब समय मिले. रेमुना की खीरचोर गोपीनाथ की कहानी, चैतन्य महाप्रभु ने कहानी सब भक्तों को बताई जैसे उन्होंने सुनी थी, किससे? चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी की कहानी रेमुना में सब भक्तों को बताई, ठीक उसी प्रकार जैसे महाप्रभु ने किसको सुनाई थी? महाप्रभु ने किससे सुनी थी? ईश्वरपुरी से। और ईश्वरपुरी ने किसे सुनी थी माधवेंद्रपुरी की कहानी? ईश्वरपुरी ने खुद देखी थी, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। आपने देखा ये मंदिर खीरचोर गोपीनाथ, नेक्स्ट टाइम आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां से सिर्फ 4-5 घंटे का रास्ता। आपने देखा है खीरचोर गोपीनाथ? खीरचोर गोपीनाथ महाराज ले गए थे हमको एक बार, है ना, वहां के खीर शाम के समय पहुंच रहे थे हम लोग, वहां के खीर अमृत के समय। फिर इसके बाद चैतन्य महाप्रभु भुवनेश्वर पहुंचे, एक्चुअली कटक पहुंचे पहले। कटक में आप अभी जाओगे तो एक नदी है जिसका नाम है महानदी, और वहां पर एक घाट है गड़ागड़ी घाट, गड़ागड़ी घाट, वहां पर प्रताप रुद्र महाराज की समाधि है। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से भुवनेश्वर पहुंचे। आपको मालूम है भुवनेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डज भुवनेश्वर मीन? भुवन के ईश्वर। वहां पर एक सरोवर है जिसका नाम है बिंदु सरोवर। यह सरोवर कैसे बनाया गया? भगवान शंकर जी सारे तीर्थों से एक एक बूंद जल लेकर आए और वो जल सबको सब एक कुंड में भर दिया और उसका नाम हो गया बिंदु सरोवर। और चैतन्य महाप्रभु अब भुवनेश्वर की कहानी बताने लगे कि शिवजी यहां पर कैसे आए। शिवजी और पार्वती पहले वाराणसी में रहते थे, फिर उन्होंने वाराणसी छोड़ के कैलाश पर्वत जाने का निश्चय किया। जब वो कैलाश पर्वत में चले गए तब वाराणसी में मानव रहने लगे और शिवजी एक शिवजी के भक्त थे, इसका नाम था काशीराज। उसने बहुत साल तपस्या की शिवजी की। शिवजी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? बोले मुझे ये वरदान दो कि मैं लड़ाई में भगवान कृष्ण को पराजित करूं, भगवान को मार सकूं, मतलब मारा जाऊं उनके द्वारा। उसका मीनिंग हुई कि भगवान उस समय द्वारका में रहते थे, और शिवजी जो मूर्खों के स्वामी हैं बहुत दयालु हैं, बोले ठीक है जाओ, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। तो अपनी पूरी सेना लेकर आगे गए और पाशुपत अस्त्र भेजा। पाशुपत अस्त्र होते ना शिवजी का, पाशुपत अस्त्र। तो वो अस्त्र सामने आया। इधर भगवान कृष्ण द्वारका में थे, वो सब कुछ जानते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उस समय बाहर नहीं आए, अपना सुदर्शन चक्र भेजा। इधर से पाशुपत अस्त्र सुदर्शन चक्र, अपने कभी वीडियोस में देखा होगा ऐसे लड़ाई। और सुदर्शन चक्र को देखकर पाशुपत अस्त्र डर गया और वो डर के मारे भाग गया। तब शिवजी सुदर्शन चक्र के सामने आए, सुदर्शन चक्र को देखकर शिवजी भी भागने लगे। शिवजी प्रार्थना करने लगे, सब पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद, अभी लास्ट भाग है ध्यान से सुनिए, सब जगह घूमने के बाद शिवजी जहां भी जाते सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा हुआ। एक्चुअली शिवजी को पहले भी अनुभव था सुदर्शन चक्र का, किस रूप में? दुर्वासा मुनि के रूप, इंटर यूनिवर्सल ट्रेवल। सब जगह घूमने के बाद शिवजी भगवान के चरणों में आके बोले, अब आप सिर्फ जय हो बोलना, हे जगत के स्वामी देवकी नंदन भगवान कृष्ण आपकी जय हो, हे भगवान जो बुद्धि भी देते हैं और मूर्खता भी देते हैं उन भगवान कृष्ण की। शिवजी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मूर्खता की थी भगवान कृष्ण का विरोध करके, इसलिए क्या बोल रहे हैं, बुद्धि भी आपसे आती है मूर्खता भी आपसे आती है इसलिए आपकी जय हो। हे भगवान जो दूसरों के दोष को नहीं देखते आपकी। हाउ इंटेलिजेंट लॉर्ड शिव है। इसे ऐसे ही जैसे कोई गलती हो जाए वैष्णव से तो प्रणाम करके बोलना चाहिए, आप बहुत दयालु हो, दूसरों के गलती को भी नहीं देखते आपकी जय हो, तो बेचारा क्या बोलेगा इसके बाद। एटलीस्ट सजा भी देंगे कि थोड़ा कम सजा देंगे। शिवजी बोलते हैं, हे भगवान जो सारे अपराधों को नष्ट करने वाले हैं आपकी, हे करुणा के सागर गौरंग महाप्रभु की। जस्ट लास्ट भाग प्रभु जी, जस्ट 2 मिनट्स। ओके ओके, जस्ट एंड 2 मिनट्स। जब ऐसे बोलने लगे तब भगवान कृष्ण ने कृपा की, सुदर्शन चक्र चला गया, सब कुछ शांत हो गया और वृंदावन का दृश्य दिखाई पड़ा, गोपी यमुना गोवर्धन। फिर भगवान कृष्ण ने बोले, हे शंकर जी, गुस्से में बोले, तुमने उस कीड़े का साइड क्यों लिया? वो काशीराज कीड़ा है क्या? तुम जानते नहीं हो कि ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र, दुनिया के सारे अस्त्र भी मेरे सुदर्शन चक्र का सामना नहीं कर सकते? अब दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरी से कोई घृणा नहीं करता। शिवजी ये सुन के डर गए, एक्चुअली डर गए। यहां लिखा ही वॉज ट्रेम्बलिंग, थर थर कांप रहे थे। और बोले भगवान, ये समझो आपके स्वामी बोले, आपके गुरु बोले कि तुम्हारे से बढ़कर मेरे से कोई घृणा नहीं करता, तो कितना बुरा लगेगा। शिवजी भगवान के चरणों को पकड़ के बोले, मुझे माफ कर दो हे भगवान। जैसे घास का तिनका हवा से चलता है, वैसे दुनिया में सब कुछ आपकी इच्छा से ही होता है। ये भी और तरीका है माफी मांगने का, यानी जो मैंने गलती की वो भी आपकी इच्छा से हुई। इसलिए भगवान मैं क्या करूं, आपने मुझे इतना मिथ्या अहंकार दिया। लॉर्ड शिवा इज द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ फॉल्स ईगो। इसलिए आपने मिथ्या अहंकार दिया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। हे भगवान, आपके चरण कमल ही मेरा सर्वस्व है, आपने मिथ्या अहंकार दिया, मैंने अपराध तो किया, मुझे माफ कर दो। अब मुझे ऐसी जगह दो, मुझे अपने धाम में स्थान दो। भगवान बोले, हे शंकर जी, मैं तुमको ऐसा धाम दूंगा जहां तुम पार्षदों के साथ रह सकते हो, वहां पर तुम कोटि कोटि शिवलिंग में होगे। इसलिए जगह का नाम है लिंगराज महादेव। क्योंकि तुम भुवन के स्वामी हो, इसलिए उस जगह का नाम हो जाएगा भुवनेश्वर। और पहले इसका नाम है एकाम्रवन। यह वाराणसी की तरह है, सुंदर है, यह मेरा धाम है, यह मेरे को बहुत प्रिय है। इधर से थोड़ी दूर समुद्र है, समुद्र के ऊपर एक नीला पर्वत है जिसका नाम है नीलाचल। अचल यानी पर्वत ना, नीलाद्री, नीलाद्री भी जगन्नाथपुरी को बोलते। वहां पर एक वट वृक्ष है, बैनियन ट्री। और जब सारे ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है तो उस जगह का नाश नहीं होता, वो मेरा घर है। मैं वहां पर बहुत अच्छा प्रसाद खाता हूं। उसका इलाका 80 माइल तक है। जब देवता ऊपर से देखते हैं तो कीड़े और जानवर और पशु और रिक्शा वाले सबके चार हाथ दिखाई पड़ते। जो भी पुरी में रहता है उसके चार हाथ है, इवन उसको भी नहीं पता होगा उसके चार हाथ है। जो भी उधर चलता है उसको परिक्रमा का फल मिलता है, और जो बातचीत करता है कुछ भी बोले उसको प्रार्थना अर्पण करने का फल मिलता है। वो स्थान इतना शुद्ध है, अगर वहां मछली भी खाते हो तो महाप्रसाद खाने का फल मिलता है। लेकिन महाराज बोले थे, हम ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। उस इलाके में यमराज का कोई कवरेज नहीं है, ये ना यमदूत आते ही नहीं है वहां पे, क्योंकि जो भी शरीर छोड़ता है वो भगवान के धाम जाता है। और वो स्थान की उत्तर की ओर मैं तुम्हें एक और स्थान दूंगा, वो जगह का नाम होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर महादेव की, श्री जगन्नाथ स्वामी की। ये सुनकर शिव जी ने भगवान को धन्यवाद दिया, थैंक यू भगवान, मुझे ऐसे वरदान दो कि जहां जहां आपके धाम है वहां पर मैं रहूं। गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, सब जगह पर है नहीं? राधा गोपीनाथ के पास बाबुलनाथ महादेव, सब जगह पे भगवान के पास शिवजी रहते हैं। मैं बहुत पतित हूं भगवान, मुझे अपने धाम में रखो। फिर भगवान का गुस्सा कम हो गया, शिवजी को गले लगाया और बोले, हे शंकर जी, तुम्हारा शरीर मेरे जैसे है, जो तुमको प्रिय है वो मुझे प्रिय है, हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। ये स्थान एकाम्रवन मैं तुम्हें दे रहा हूं, और जो कहता है मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं हरि का भक्त हूं और शिवजी की निंदा करता है, मैं उसका नाश कर देता हूं। ये सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और वो यहां पर रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने शिवलिंग का दर्शन किया और शिवजी को देखकर वो डांस करने लगे, गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। बचा हुआ सेक्शन अगली बार करूंगा। चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए जाते हैं, जब चक्र को दूर से ही देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं कमलापुर में, और अंत में जब जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ को मिलने जाते हैं, वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो ये मैं आत्म पवित्रता के लिए कर रहा हूं, मेरे अंदर असंख्य दोष हैं। आप सब गुरुदेव और वैष्णव मुझे आशीर्वाद दो कि मैं शुद्ध रूप से हरि नाम ले सकूं, मेरे दोष दूर हो सके, और मैं आपकी कृपा से कल इस समय मैं भुवनेश्वर पहुंच सकूं। स्पेशली थैंकफुल टू वृंदावन आनंद प्रभु, रूप विलास प्रभु और सब ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी चांस टू सर्व। मैं आप सब वैष्णव को भी धन्यवाद देता हूं, जो इतनी उत्सुकता में श्रवण करने के लिए, हालांकि आज रविवार नहीं है, सोमवार भी नहीं है, आप सबका जो उत्साह है वो देख के मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे बन सकूं, मैं भी श्रवण के लिए उत्सुक बन सकूं, कैन बिकम ईगर टू हियर। सिर्फ वस्त्र से कोई भगवान के धाम नहीं जा सकता, जब शरीर छोड़ेंगे तो भगवा कपड़ा साथ में नहीं जाएगा, लेकिन कितने सुनने की उत्सुकता है, कितना हरि नाम में रुचि है, वही साथ में जा सकते। तो प्लीज ब्लेस मी बाय चैंटिंग हरि हरि वंच कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।